कृष्ण। तो कल हम आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे सांख्य योग, कर्म योग और उस व्यक्ति के लक्षण जो इस कर्म योग में युक्त है, उसके अनुभव और साक्षात्कार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी 14वें श्लोक, जिसमें 14वें और 15वें श्लोक में कर्म का कारण क्या है, कर्ता कौन है, क्यों जीवात्मा को यह सुख दुख भोगने पड़ते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया। तो हम पहले भी बता रहे थे इसके बारे में कि बहुत सारे लोगों ने, कई दार्शनिकों ने हजारों हजारों सालों तक इसके ऊपर चिंतन मनन किया है, फिर भी कुछ समझ नहीं पाए। तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं ना 4वें अध्याय में, कि भगवान अर्जुन को कृपा करके ये, या हम सब लोगों को कृपा करके ये सब जटिल विषयों को बहुत ही सरलता से बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 14, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर के स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो जीवात्मा वो कर्म को करता नहीं है और दूसरों को भी कराने के लिए कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पर बार बार आता है ना, जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही वह कर्मकल का रचना करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजतु न कर्म फल संयोगम, न कर्तृत्वम न कर्माणि, तो वो कर्म का सृजन नहीं करते हैं। लोकस्य सृजतु प्रभु, कर्माणि न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, तो वो लोगों को कर्म करने के लिए भी प्रेरित करता नहीं है। और यहाँ पर शब्द जीवात्मा को प्रभु शब्द करके संबोधित किया गया, भगवान प्रभु करके संबोधित करते हैं जीवात्मा को। क्यों? क्योंकि बहुत ही जगत में आप सब लोग भी प्रभु हैं ना। भौतिक जगत में जीवात्मा प्रभु बनने के लिए कोशिश करता है, वास्तव में जीवात्मा प्रभु नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में प्रभु बनने के लिए कोशिश करता है, इसलिए प्रभु करके संबोधित कर रहे हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो कर्म का और कर्म फलों का और दूसरों को कर्म कराने का क्या स्रोत है, क्या कारण है वो, और कौन सा चीज वो करता है? जीवात्मा नहीं करता है तो कौन करता है उसको? स्वभावस्तु प्रवर्तते, उसके स्वभाव करता है। तो यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है ऐसे लगते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो अपने पूर्व कर्म किए हुए कर्म के अनुसार प्रकृति उसको एक स्वभाव देता, नेचर जो बोलते हैं हम, तो इसलिए वो तीन गुणों से बना रहता है। तो श्रील प्रभुपाद उसको सीधी तरीके से गुणों से किया जाता है। इसको तो पहले ही भगवान ने बता दिया था, प्रकृति क्रियम अनानी गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार अभिमुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं प्रकृति क्या है, वो जड़ है, तीन गुण क्या है, जड़ है। तो आत्मा नहीं है तो कैसे कार्य हो सकता है। हम लोगों ने ये भी बताया, हम लोग ये भी जानते हैं ना, जब तक इस प्रकृति में जीवात्मा को नहीं डाला जाता या परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, प्रकृति क्रियाशील नहीं होती है। तो ये स्वभाव या प्रकृति के तीन गुण कैसे कारण बनते हैं, तो ये प्रश्न उठ सकता है। हम इस तात्पर्य को अभी चर्चा नहीं करेंगे, अगले श्लोक के को पढ़ के बाद में इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री प्रभुपाद अगले श्लोक से इस तात्पर्य में उसका कारण बता रहे हैं, कौन एक्चुअली कर्म और कर्म फल के कारण कारणीभूत कौन है, उसके बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 15, नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः ज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सो भगवान बोलते हैं मैं जीवात्मा भी इसका कारणीभूत नहीं है, और इस श्लोक में वो बोलते हैं मैं भी उसका कारणीभूत नहीं हूँ। तो ऐसे बोलते हैं उसका अनुवाद, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान का कारण मोहग्रस्त रहते हैं, वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। विभु प्रभुपाद जी इस विभु शब्द को पिछले श्लोक में जीवात्मा को प्रभु करके संबोधित किया गया, अभी इस श्लोक में भगवान को विभु करके संबोधित किया जा रहा है। विभु मतलब वो महान, अनु मतलब बहुत ही सूक्ष्म, तो वो अनु विभु शब्द का विरुद्ध पद है, तो अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं विभु मतलब जो व्यक्ति पूरी तरह से विभु, एक दृष्टिकोण से यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं उसका अर्थ भगवान को संबोधित कर, भगवान शब्द का जो अर्थ होता है वही विभु शब्द का भी अर्थ होता है। हम लोग जानते हैं ना भगवान शब्द का अर्थ जो पराशर मुनि ने वर्णन किया था विष्णु पुराण में, किसी को पता है, हम लोगों ने चर्चा किया था ना उसको, भगवान शब्द का अर्थ, भगवान शब्द का क्या अर्थ है बोलिए। ओके, क्या श्लोक है वो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्यैव शरणं भव इति गणः। सो अनुवाद बोलिए। कौन कौन से है छह ऐश्वर्य, सुंदरता, तो ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में जिसके पास है वो भगवान, वही विभु है। इस शब्द को, ये भगवान का नाम भी हो सकता है, नाम भी है ये विष्णु सहस्त्र नाम विभु। तो ये जो शब्द उपयोग करके भगवान उसका उस पॉइंट हम बाद में चर्चा कर, उसको बाद में आएंगे। नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभुः, कश्चित् पापम और सुकृतम उससे उसका कारणीभूत नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है भगवान को भी। वो अज्ञान इनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान के कारण ही जीव क्या है मोहित हो गए हैं, ऐसे बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में यहाँ पर विभु करके क्यों बोल रहे हैं भगवान, वो कभी भी अज्ञान के प्रभाव में नहीं आते क्योंकि वो विभु है, तो महान है, सभी ऐश्वर्यों से युक्त है वो। ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य क्या है, ज्ञान है, इसके कारण वो कभी अज्ञान के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ऐसे बोले भगवान कि ये सब चीज भौतिक गुणों के द्वारा क्रियाशील होते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि भौतिक गुणों के द्वारा ये सब कर्म और कर्मफल सृष्टि होते हैं तो वो सही है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारा शरीर ये तीन गुणों से बना रहता है और तीन गुणों के प्रभाव में हम जब चेतना, हमारा चेतना तीन गुणों के प्रभाव में आ जाता है तो उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, तो वो कार्य उसके अनुसार होता है, तीन गुणों के अनुसार होता है, रजा तमा सत्व गुण के अनुसार। तो जब कार्य संपन्न होता है तो उसके अनुसार फल भी प्राप्त होता है, तो इसलिए तीन गुण क्या है वो कार्य का और जो कर्म या कर्म फल का कारणीभूत है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट तो है कि ये सभी प्रकृति के गुण, या प्रकृति क्या है वो जड़ है, हम लोग जानते हैं ना ऊंचा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अंतरा प्रकृति। सो दो प्रकार के प्रकृति होते, ये जीवात्मा परा प्रकृति है क्योंकि उसके अंदर चेतना है, लेकिन भौतिक प्रकृति जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। तो कैसे चेतन विहीन जो प्रकृति है वो कर्म का कारण बन जाता है, ये एक प्रश्न हो सकता है। और दूसरा है, हम ये स्वीकार भी करेंगे गुण, प्रकृति के गुण कारणीभूत बनेंगे, तो हम लोग क्यों, हमें उसको कर्म के सुख दुख को प्राप्त करना पड़ेगा। ये जीवात्मा हो वो सभी कर्म का कारणीभूत नहीं है, कर्म या कर्म फल का कारणीभूत नहीं है, तो या दूसरों को वो कर्म कराता नहीं है, या हमें दूसरे लोग कर्म कराते नहीं है, क्योंकि वो कराते हैं तो वो उसका कारण बन जाएंगे, तो या कारणीभूत बन जाएंगे, तो हमें या उनको क्यों ये सुख दुख के जो फल है वो हमें भुगतना पड़ेगा, ये प्रश्न उठ सकता है कि नहीं। और इसके कारण ही लोग क्या करते हैं, भगवान को खोजते रहते, मैंने क्या किया, मुझे क्यों ऐसा हो गया, ऐसे लोग भगवान को खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर अज्ञानेन आवृतम, वो उसके लिए उत्तर है। तो तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ऐसे भगवान कहते हैं। तो क्या है, अज्ञान ही उसका कारण है, उस अज्ञान के कारण वास्तव में हम कर्ता नहीं है, हम कारणीभूत नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो इसके कारण हमें वो सुख, जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है, उसको स्वीकार करना, कर्म के फल जो है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो अहंकार विमूढात्मा अपने आप को कर्ता मानता है, वही अज्ञान है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए आप देखिए 14वें अध्याय के श्लोक में इसको बताते हैं श्रील प्रभुपाद, अनंत काल से अपरजित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। आप देख रहे हैं वहां पर कहां पढ़ रहे हैं हम लोग, 14वें श्लोक के तात्पर्य में, अनंत काल से अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। तो प्रभुपाद जी वो 14वें श्लोक से उन्होंने लिया है उसको, वो कारण बताते हैं, वो जीवात्मा का इस भौतिक जगत में बंधन का कारण है, वो दुख का कारण है, तो हालांकि वो करता नहीं है। तो जीवात्मा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो इच्छा कर सकता है, लेकिन इच्छा के साथ साथ अज्ञान के कारण वो मोहित होके मैं करता हूं ऐसे जो मानता है तो तुरंत ही उसके कर्म फलों को स्वीकार करना पड़ता है। हम लोग पिछले श्लोकों में चर्चा किया, वो जो व्यक्ति कर्म योग में स्थित रहता है, वो अनासक्त है कर्म फलों से, वो क्या सोचता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, इति वर्तन तिथि धारयन, उसका धारणा क्या था हम लोगों ने चर्चा किया, और भगवान भी उनको कैसे तुलना करता है, एक पद्म पत्र से तुलना करते हैं। लेकिन जो विमुडात्मा है, अज्ञान में है, वो अपने आप को कर्ता मानता है, इसके कारण उसको ये फल स्वीकारना कर पड़ते हैं और बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। तो ये इसका कारण है। और कभी लोग पूछते हैं, क्या भगवान जीवात्मा को इच्छा को रोक नहीं सकते हैं? जीवात्मा इच्छा करता है, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो हाँ, वो अच्छा हमें क्या है, ज्ञान प्रदान करते हैं, आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसे कहते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं तो वो उसमें बीच में नहीं आते, उनकी इच्छा में बीच में नहीं आते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक जो चोर है वो भगवान से प्रार्थना करे, चोर लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे इसको चोरी करने में सहायता कीजिए, लेकिन वो बताते हैं भगवान की मत करो, ये अच्छा नहीं, पकड़े जाओगे, पीटे जाओगे, ऐसे बताते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं नहीं मुझे करना है करके ऐसे सोचता है, फिर भगवान अनुमति दे, बाद में जो भी होता है उसको स्वीकार करना है ना। तो ऐसे, और भगवान उसमें कैसे होते हैं, उनका उनका क्या रोल होता है, अदा होता है, वो एक जज के समान रहते हैं। आपने ऐसे क्रिमिनल कार्य किया तो वो आपको ऐसे दंड दे देंगे, आप ऐसा कुछ अच्छा काम किया तो आपको क्या उपहार भी दे देंगे, तो वो जज के समान है। आप भगवान तो शत्रु नहीं जीवात्मा का, जज तो शत्रु नहीं होते उस व्यक्ति का, लेकिन उनको नियम के अनुसार करना पड़ता है, वैसे ही भगवान जीवात्मा का शत्रु नहीं है वास्तविक, हालांकि जीवात्मा या सभी लोग इस जगत में वो शत्रु भाव को रखते हैं। और भगवान यहाँ पर या श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बोलते हैं, एक सागर को तुलना करते हैं, जो ही जीव शरीर के कार्यों में पृथक हो जाता है तो ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है न इसके कर्मों का कर्मों तथा फलों का नियंता ही, वह तो इस बहुसागर के बीच में जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। तो वास्तव में स्थिति क्या है जीवात्मा का, वो सिर्फ संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में। सो सागर की लहरें उसे उछलती रहती है किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता, उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 15वें अध्याय के तात्पर्य में, विभु मतलब वो कभी भी इसके प्रभाव में, अज्ञान के कारण प्रभाव में नहीं आते हैं। और भगवान जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे, जैसे एक व्यक्ति फूल को सूंघता है तो फूल से उसका कुछ संबंध नहीं है, वो फूल से अलग है, दूर है, दूर से उसको सूंघते हैं, वैसे ही जीवात्मा के जो इच्छाएं हैं उसको वो सृष्टि नहीं करते हैं, वो जीवात्मा अपने स्वतंत्र रूप से वो इच्छा करता है, लेकिन वो फूलों के जो जो सुगंध है जैसे सुनते हैं, भगवान भी उनको पहचानते हैं कि जीवात्मा के क्या है, क्या इच्छाएं हैं, तो उनको समझ में आ जाता है जीवात्मा ये सब इच्छाएं कर रहे करके, लेकिन वो इन भौतिक इच्छाओं को करने के बजाय वो भगवान की ओर, परमात्मा की ओर मोड़ दिया तो भगवान उनको उद्धार करेंगे।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिजायर इज द सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग। प्रभुपाद जी वहां पर ये जो इच्छा जो है जीव के बद्ध, जीव को बद्ध करने के लिए एक सूक्ष्म बंधन है। समथिंग दे हैव ट्राइड टू ट्रांसलेट दैट स्टेटमेंट इज डिजायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग। ये इच्छाएं जो है आत्मा का बद्ध अवस्था है, बहुत ही सूक्ष्म बद्ध अवस्था है। तो वो इच्छाएं कैसे आते हैं, हमारे पूर्व कर्म किए हुए कर्म के अनुसार हमारे इच्छाएं आते हैं। सेक्स डिजायर इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ अवर प्रीवियस कर्म, पिछले जन्म में जो हम लोग कर्म किए हैं उसके कारण ही मैं ये काम वासना आता है। तो कर्म फल अलग अलग प्रकार के। और यहां पर कुछ श्लोक प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं, ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है जो प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं, ये ऐसा है कि जैसे लोग कोसते हैं ना भगवान को, निंदा करते हैं ना, और उन्होंने क्यों ऐसा किया है, उन्होंने ऐसे क्यों करवाया मेरे से, ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे श्लोक है ये। यहाँ पर देखिए वो, ये शवु हेव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नीशते, ये शवु एवा साधु कर्म करायते यमधो निनीशते। पहला क्या है, ये शवु होह साधु कर्म, वही है जो एक जीवात्मा को साधु कर्म करने के लिए लगाते हैं। या यहाँ पर कैसे अनुवाद किया उन्होंने, शुभ कर्मों को यहाँ पर साधु, आप जानते हैं ना संस्कृत शब्द साधु कर्म, यहाँ पर बताया साधु कर्म, उसके कारण जीवात्मा क्या है ऊंचे लोकों को चले जाता है। और वही भगवान है जो ये वा साधु कर्म खा रहे थी यमधो निनीशते। तो ऐसे असाधु, ये वा साधु असाधु कार्य में लगाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, तो जीव यमेद्यो यमलोक जाता है, नरक में जाता है। ऐसे यहाँ पर कौशीत की उपनिषद में कहा गया। और दूसरा श्लोक ये महाभारत से है, यहाँ पर तो उल्लेख नहीं लेकिन ये महाभारत से है श्लोक, अज्ञो जंतुर निशोयमात्मनः सुख दुख यो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश वाश ब्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु द्वारा प्रेरित बादल। ऐसे कहते हैं, लेकिन इन श्लोकों में गलती क्या है उसको भगवान यहाँ पर इस श्लोक में है, भगवद्गीता के श्लोक में कह रहे, परमेश्वर न तो किसी पापों का ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। भगवान इसको बाध्य नहीं करते जीव को ये करने के लिए और नहीं करने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, व्यवस्था तो करते हैं, सहायता तो करते हैं। वो भगवान स्वयं उसको बाध्य नहीं करते ये करने के लिए, वो जीवात्मा का स्वतंत्र इच्छा है, डिजायर। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत इच्छा के बारे में वर्णन करते हैं, वो जीवात्मा का स्वतंत्र इच्छा है, उसमें वो बीच में नहीं आते। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे वो चोर का उदाहरण, ऐसे भगवान उसके बीच में नहीं आते, लेकिन जब जीवात्मा वो इच्छा करता है कुछ करने के लिए, उसके लिए भगवान उसके कर्म के अनुसार जिस तरह डिजर्व, यहाँ पर वो शब्द भी अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने उसको उपयोग किया है, योग्यता अनुसार, डेजर मीन्स योग्यता अनुसार। तो भगवान क्या करते हैं, उसको सहायता करते हैं उस कर्म करने के लिए, फल फल को प्राप्त करने के लिए, कर्म फल को भोगने के लिए सहायता करते हैं, लेकिन वास्तव में उसके वो कारणीभूत नहीं है उसके लिए। अंततोगत्व है लेकिन जीव उसका इच्छा करता है, इसके कारण जीव को उसके कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, फल कर्म फल को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो अंतिम श्लोक वेदांत सूत्र जो है, वैषम्य नरग्रण्य न सापेक्षात्वा तथा ही दर्शयति। भगवान ने न तो किसी प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। सो बेसिकली क्या है, जीवात्मा का अविद्या ही उसके बंधन का कारण है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न कराता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसे भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। वो पहले अज्ञान के कारण वो कर्म बंधन में फंस जाता है और अज्ञान के कारण फिर भगवान को कोसता है, भगवान को शाप देता है। तो ये जीवात्मा का समस्या है इस भौतिक जगत में, है कि नहीं? एक बार ऐसे हुआ, एक भक्त 25 साल वो आंदोलन में रहे और बहुत सारा चीज करते थे, बहुत सारा भक्ति किया उन्होंने, हर एकादशी को अच्छा निर्जल व्रत किया, बहुत सारा जप किया उन्होंने। तो एक बार ऐसे हो गया, कहीं वो नाव में जा रहे थे, वो नाव डूब गया, वो कैसे न कहे कैसे तो बच के आए, वो फिर बहुत ही क्रोधित हो गए, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों किए करके। ऐसा भी सोचते है ना? तो जीवात्मा वास्तव में भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवात्मा इच्छा करता है और वो प्रभुत्व जमाने के लिए कोशिश करता है इसके कारण। तो अगला श्लोक, ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषा नाशमनः तेषां आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा, अज्ञान के कारण जीवात्मा भौतिक जगत में बंध जाता है, कर्म फलों से बंध जाता है, कर्म से बंध जाता है। तो और अभी वो कैसे मुक्त हो सकता है, वो हमारा कर्मयोगी की मुक्ति। तो अभी ज्ञान से शुरू करते हैं, पहले अज्ञान का बंधन का कारण इस श्लोक में वो क्या है, ज्ञान से आरंभ करते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, ज्ञाने न तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः, तो उस ज्ञान के कारण अज्ञान जब नाश हो जाता है तो सब कुछ उसको समझ में आ जाता है। जैसे दिन में जब सूरज निकल आते हैं और प्रकाश सब जगह फैलाते हैं तो सभी चीजों को हम लोग यथारूप देख सकते हैं, है ना? जब तक सूरज नहीं है तो हम लोग यथारूप नहीं देख सकते। हम लोग लाइट बना सकते हैं लेकिन लाइट से भी हम लोग यथारूप नहीं देख सकते, है ना? आप ऐसे कपड़े के दुकान में जाइए, वहां पर बहुत सारा लाइट लगाते हैं वो लोग, ताकि आप लोग समझे नहीं कि कैसे रंग का कपड़ा है या वो चमके करके। आप लोग उसको लेकर आते हैं बाहर, देखते हैं कि वो उतना चमकता नहीं, लेकिन प्रकाश, सूरज का प्रकाश है तो यथारूप हम लोग देख सकते हैं सब कुछ, यथास्थिति। तो वैसे ही जब हम लोग इस ज्ञान का जो प्रकाश है, सूरज हमारे हृदय में प्रकट हो गया, तो सब कुछ समझ में आ जाता है, वास्तविक चीज क्या है, क्या हमारा बंधन का कारण है, क्यों हम जगत में बंध गए हैं। तो ऐसे हम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद चौथे अध्याय में गए हैं और वो गुणगान करते हैं इस ज्ञान को, क्योंकि इस श्लोक में ज्ञान के बारे में बताया गया है ना, प्रकाशित हो जाता है सब कुछ। प्रभुपाद जी 36 चौथे अध्याय के 36 37 और 38वां श्लोक यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। उन श्लोकों में दिव्य ज्ञान का गुणगान किया गया, हम लोगों ने चर्चा किया था ना उसको। तो पहले उसमें अपिछेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो प्रापकर्तव्यं सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। पहले ज्ञान को एक ऐसे नाव से तुलना किया गया जिसके कारण हम लोग इस गौसागर को पार कर सकते हैं। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि, तो यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए। तो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे, ऐसे वो कहते हैं। फिर अगले श्लोक में एक अग्नि से उसको तुलना की गई ज्ञान को। यतैदांसी समिद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे जो प्रज्वलित अग्नि होते हैं सभी ईंधन को भस्म कर देता, वैसे ही उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कैसे भक्ति क्लेशाग्नि की तरह कर्म करता है, कैसे चार प्रकार के जो कर्म फल है वो सब नष्ट हो जाते हैं। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो भगवान कहते हैं कि संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ज्ञान को नॉलेज इज ऑलवेज एस्टीम्ड बोलते हैं कि सो नॉलेज इज हाईली एस्टीम्ड, सो ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और इसके पहले जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत है वे नहीं होते। जो अज्ञानी है अज्ञान से आवृत है, अंत में ज्ञान का अर्थ क्या होता है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है तो उसका ज्ञान। तो वो उसको जिसको भगवान को भूल गए है कृष्ण भावना भावित में नहीं है वो अज्ञान में है। तो अज्ञान से जो आवृत होते हैं वो बंद जाते हैं और मोहग्रस्त हो जाते हैं, और जो ज्ञान में स्थित है वो ऐसे मोहग्रस्त नहीं होते हैं। तो और वह ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं ज्ञानवान, बहुत जन्मों के बाद वो ज्ञान को अनुशीलन करके 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 एक समय वो समझ जाते हैं कि भगवान वासुदेव सब कुछ है, फिर उनके शरण में चले जाते हैं। तो और इसमें इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो फिर से पिछले श्लोक से जो अविद्या शब्द है या अज्ञान जो है उसको और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। और विशेष करके वो कह रहे हैं कि जो मायावाद है वो अज्ञान का लक्षण है, ऐसा बोलते हैं। वो भी एक अज्ञान है, अज्ञानम आवृतम, मायावाद दर्शन भी अज्ञान है। क्यों अज्ञान है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अनसेरेमोनियसली वन थिंग्स दैट ही इज गॉड। सो जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण अर्थ जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वो अविद्या के पाश में जा गिरता है।
जैसे Prabhupada here, the living entity is bewildered in so many. For instance, when he is unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nonsense. They have not translated that unceremoniously. That is very important word. Nice word. Prabhupada is just beating my mother. Unceremoniously, very nasty, degraded people they are. तो जब वो लोग उसको भी नोट कर सकते हैं। सो अविद्या से मोहग्रस्त या तो कहते कि क्या है, तो उदाहरणार्थ अपने आप को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या के पास में जा गिरता है। अविद्या के पास फॉल्स इनटू द लास्ट स्नेर ऑफ निसेंस, दिस इज अनदर लास्ट स्नेर, अंतिम पाश है वो। अविद्या का अंतिम पाश क्या है, अपने आप को भगवान माना। तो इस भौतिक जगत में उससे पहले बहुत तरीके से वो मोहग्रस्त रहता है। मैं क्या हूं, मैं हिंदी हूं ऐसे, या मैं भारतीय हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं क्या हूं, पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, पंडित नेहरू हूं, गांधी हूँ, इंद्र हूँ, चंद्र हूँ, ब्रह्मा हूँ, अंत में कुत्ता बिल्ली भी हूँ तो वो तो भगवान की सेवा है। तो ये सब क्या है, अज्ञान का, मोह का लक्षण है। ये मोहग्रस्त होते हैं तो अज्ञान के लक्षण है ये सब चीज। लेकिन अंतिम पाश या ज्ञान का अंतिम पाश क्या है, अपने आप को भगवान माना। क्यों उसको अंतिम पाश समझा गया, क्यों उसको अज्ञान समझा गया, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान अज्ञान में आवृत हो जाए। अभी सभी जीव भगवान है, तो पिछले श्लोक में ये वर्णन हुआ ना कि जीवात्मा क्या है, अज्ञान में आवृत हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर अज्ञान भगवान से भी श्रेष्ठ हो जाता था, भगवान अज्ञान के प्रभाव में आते हैं। तो ये सबसे बड़ा मूर्ख चाह है, तो धारणा है मायावादियों का, और इसको वैष्णव आचार्य इस तर्क को देखकर बहुत खंडन, अच्छी तरह से खंडन किया कि भगवान अज्ञान के प्रभाव में आता है तो फिर अज्ञान भगवान बन जाता है, अज्ञान भगवान से भी श्रेष्ठ हो जाता है, वैसे कैसे हो सकता है। इसीलिए ऐसे नहीं, ये बहुत बड़ा भूल धारणा है, ऐसे वो प्रॉपर बोलते। तो यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है, क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान, सेटन अंग्रेजी में, ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो ऐसे ही, अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए होती है। ये सूर्य के समान जो ज्ञान जो है कैसे प्राप्त होता है, एक अधिकृत गुरु होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा ही, प्रामाणिक गुरु होते हैं उनके द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना पिछले अध्याय में, कौन प्रामाणिक गुरु हो सकते हैं। भले ही किसी व्यक्ति का को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा के में अंतर न कर पाए।
तो ये मायावादी लोग हो सकता है वो लोगों को पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं करके, लेकिन क्या उनको ये पता है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या अंतर है? इसलिए वो लोग भी क्या है, अज्ञान में है, अज्ञानम आवृतम देयर। तो इसलिए हमें ईश्वर की प्रतिनिधि या गुरु के पास जाना चाहिए। और विशेष करके ये थोड़ा ग्रामेटिकल हमें समझना चाहिए इसको, ये श्लोक को। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना तेषाम, येषाम और तेषाम क्या है, जिनका मतलब क्या है, जिनका और उनका, उनके, ये क्या बहुवचन है ना। तो इसके आधार पर हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि हम सब लोगों का अलग अलग से जो अस्तित्व है, हम लोग एक जो एकात्मवाद को खंडन करते हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं। हम लोग चर्चा किया था ना विस्तार से एकात्मवाद क्या होता है करके। तो यहाँ पर देखिए, तो ये एकात्मवाद भी क्या है, अज्ञान है ये। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में तो यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है, एक अलग व्यक्ति है। व्यष्टि मतलब भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है। समझ में आ गए क्या बोल रहे? तो अंधकार के कारण सब कुछ एक ही दिखता है, लेकिन दिन में जब सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि का पहचान ही वास्तविक ज्ञान। तो हम लोग ऐसे भगवद गीता से पूरा देखेंगे तो मायावाद को कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है, है ना। इस श्लोक के आरंभ में भी ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स, वो वासुदेव शब्द को वो लोग उसका भी गलत अर्थ दे सकते हैं, सर्व आल परवेडिंग बोल सकते हैं। वासुदेव वो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, वन हु इज आल परवेडिंग। आल परवेडिंग मतलब निराकार भी आल परवेडिंग हो सकता है ना। लेकिन प्रपद्यते उसको कैसे वो क्या बोलेंगे, शरणागत आल परवेडिंग को तो शरणागत नहीं होंगे ना, है कि नहीं। उनको कैसे भोग चढ़ाएंगे, उनको कैसे श्रृंगार करेंगे, वो कैसे होता है निराकार को। तो ये सब हम लोग कभी भी भगवद गीता अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कभी भी मायावाद का कोई प्रश्न ही नहीं होता वहां। तो अगला श्लोक, तद्बुद्धया क्या होगा, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्दूतकल्मषः। तो जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। यहाँ पर बार बार तत् 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 शब्द आता है ना। तत् मतलब वो मतलब परम सत्य, उसका अर्थ है। तो जब सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, वो परम सत्य में स्थिर हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो वो मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो पहले मिसगिविंग्स थ्रू वन बिकम्स कंप्लीटली, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है। पहले पूर्ण ज्ञान के द्वारा कलमश से शुद्ध होता है। अभी ये शब्द जो पूर्ण ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले श्लोक में अपने आप आत्मा के बारे में ज्ञान हुआ एक व्यक्ति को, मैं कौन हूं उसको प्रकाशित हो गया। अभी भगवान के साथ संबंध जो है उसको इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि तत् तत् शब्द क्या है, वो परम सत्य को संबोधित करता है। तो वो तत्व क्या है, परम सत्य क्या है, उसका परिभाषा क्या है, श्रीमद् भागवतम में किसी को पता है जो वर्णन हुआ है? परम सत्य जिसको तत्व कहते हैं, वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मायते परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत् मतलब या तत्व मतलब क्या है, परम सत्य मतलब वो अद्वय ज्ञान है, और उसको अलग अलग लोग ब्रह्म परमात्मा और भगवान करके संबोधित करते हैं या साक्षात्कार करते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसका ज्ञान होता है। तो इसलिए परतत्व का प्रभुपाद जी यहाँ पर अष्टर में वर्णन कर रहे हैं। अंत में परतत्व क्या है, वो भगवान है। तो क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइवा, मुझसे और कोष कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं सर्वोच्च हूँ। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है। जो भगवान का स्वरूप है वो परमात्मा और ब्रह्म से भी परे है, श्रेष्ठ है, उनका स्रोत है, या ब्रह्म और परमात्मा उनके अधीन है। तो इसलिए पिछले श्लोक का क्या है, वो आत्म साक्षात्कार हुआ, ये भगवत साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार ये कराता है। तो श्रील प्रभुपाद वो वर्णन करते हैं अंत में, वो कहते हैं, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह बली भांति समझ जाता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। और पूर्ण ज्ञान का दूसरा अर्थ होता है अचिंत्य वेदावेद तत्व, तत्वपरायणः। तो वो हमें समझना चाहिए। तो अगला श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विहीन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो विद्या विनय समदर्शी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गस्ति कवि हस्तिनी। तो विद्या विनय, विद्या क्या है, विनय को लेकर आना चाहिए, जेंटलमैन यहाँ पर बताया गया ना। तो संपन्न, इससे युक्त होकर जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण मतलब उनके अंदर विद्या होना चाहिए और वो जेंटल रहना चाहिए, जेंटलमैन रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरा अनुयायी कौन है, परफेक्ट जेंटलमैन है, ऐसे कहते, वही मेरा अनुयायी। एक बार उनको पूछा गया था कि आपको, आपके अनुयायी को कैसे हम पहचान सकते हैं, वो परिपूर्ण क्या है, सभ्य व्यक्ति है, विनय, जेंटलमैन। सो विद्या विनय संपन्ने, और प्रभुपाद जी दूसरा भी वर्णन किया था, जब चाहे तो वो हनुमान और अर्जुन भी बन सकते हैं, है ना। ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ऐसे ब्राह्मण को, गाय को और हाथी को, शुनी मतलब कुत्ते को, स्वपा के च मतलब कुत्ते खाने वाले को, चंडाल को, पंडित क्या करते हैं, समदर्शिनः, वो समभाव से देखते हैं। तो इसका अर्थ है, हम लोग देखा था ना, पंडित शब्द का हम लोगों ने अलग अलग परिभाषा चर्चा किया था, कहाँ कहाँ वर्णन आया पंडित, पंडित शब्द का परिभाषा, यहाँ पर एक परिभाषा हुआ, पहले कहाँ पर आया था, अशोचानंद शोच स्वाम प्रज्ञावादम से दास से गतासुन गतासुन स नान शोचंति पंडिता, वहाँ पर भी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भी पंडित शब्द का परिभाषा आया था। तो जो लोग मृत या जीवित व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते हैं वो पंडित है। और दूसरा परिभाषा किसी को चाणक्य पंडित ने क्या बताया? मातृवत परधारेषु परद्रव्येषु लोस्वत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, वो पंडित है। आत्मवत सर्वभूतेषु, यहाँ पर सभी जीवात्मा को वो एक समान देखते हैं, अपने तरह देखते हैं। और विशेष करके यहाँ पर क्योंकि ये पहले ही वो आत्मा और भगवान का क्या हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, तो इसको ये क्या देखते हैं, सभी जीवों में आत्मा के साथ साथ परमात्मा को भी देखते हैं, वो उसको समदर्शी कहते हैं। और एक और चीज इससे आता है, कभी कभी लोग इसको उल्लेख कर सकते हैं समदर्शी करके, हमने चर्चा किया ना उसके बारे में, हाँ आपको समदर्शी होना चाहिए ऐसे, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसे ही समदर्शी का क्या है, समदर्शी का अर्थ होता है कुछ दर्शन मत करो, हाँ आंख बंद करो तो उनके उनके अनुसार वैसे है, वेद करना भी करना चाहिए। इसका अर्थ समदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि हम वेद करना छोड़ दें, जब ज्ञान स्वीकार प्राप्त करते हैं तब वेद करना चाहिए, लेकिन जब ज्ञान ज्ञान देते हैं तब वेद नहीं करना चाहिए, तब समभाव से सबको ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम लोग कोई योग्यता को देखते नहीं, योग्यता भी चाहिए ना, है कि नहीं, वो हम लोग देश देने के लिए तैयार है तो भी योग्यता नहीं है तो वो लोग ले नहीं सकेंगे, ठीक है। तो ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पढ़िए उसको।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता, सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं।
तो महत्वपूर्ण क्या चीज है यहाँ पर, ये सभी अलग अलग प्रकार के भेद जो है वो शरीर के कारण, तो आत्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं, आत्मा क्या है, भगवान के दास है, सभी लोग भगवान के दास है, सब लोग भगवान के भक्ति है, लेकिन उनको पता नहीं, बस इसीलिए अलग अलग देहों में वो प्रवेश कर चुके हैं। और एक और चीज यहाँ पर जानना है कि भगवान कितना कृपालु है, वो लोग भेद भाव किए बिना ही सबके हृदय में प्रवेश करते हैं, सबके साथ रहते हैं हृदय में, सभी जीवों में, मनुष्य हो पशु हो सुअर हो कोई भी हो, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, तो कितना मान है ना, भगवान कितना दयालु है, तो वो कभी भेद भाव नहीं करते हैं, वो समदर्शी होते हैं। इसलिए जो परमात्मा के साथ जो संपर्क करते हैं, सब जगह परमात्मा को देखते हैं, वो भी वो भेदभाव करने की जो दृष्टि है उससे मुक्त हो जाते हैं, वो लोग भी समदर्शी हो जाते। तो ये इस तात्पर्य में जोर दिया गया। तो अंत में यहाँ पर भगवान बोलते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है, आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय सच्चिदानंद है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। क्या अंतर है, हम अपने सुख दुख को समझ सकते हैं, दूसरों के सुख दुख को समझ नहीं सकते, लेकिन भगवान सबके सुख दुख को समझ सकते हैं, वो अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में। परमात्मा बिना किसी भेदभाव से सभी शरीर में विद्यमान है। तो ये सब क्या है, इस व्यक्ति के लक्षण है, वो कर्मयोगी कैसे मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, मुक्त हो गए हैं, वो उनको आत्म साक्षात्कार का अर्थ हो रहा है। इहैवाथैर्जिता सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इहैव थैर्जिता सर्गे, ऐसा व्यक्ति जो समभावना है, भगवान को साक्षात्कार कर चुका है, वो क्या है, यहाँ पर रहते हुए भी इस जीवन में भी वो थैर्जिता सर्गे, सर्ग को उन्होंने जीत लिया है। सर्ग मतलब सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है जन्म मृत्यु और कुछ नहीं है, उसको जीत लिया। यह इहैव थैर्जिता सर्गे सर्गो ये शाम शाम में स्थितम मनः, जिस क्यों ऐसे, क्योंकि समभाव में स्थित होने के कारण, शाम में स्थितम मनः, तो समभाव का अर्थ होता है पिछले समदृष्टि भी और आगे भी इसके बारे में वर्णन होगा। और वो कैसे है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म के समान वो निर्दोष है। तो प्रभुपाद वहां पर बोलते हैं भगवान निर्दोष है क्योंकि वे असक्ति तथा घृणा से रहित है। तो इसी प्रकार जब जीव असक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने की अधिकारी हो जाता है, है ना। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गयान्ति सम क्या है, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतर। तो सातवें अध्याय में आगे भगवान वर्णन करेंगे भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में जीव जन्म क्यों लिया है, कैसे जन्म लिया उसने, इच्छा और द्वेष के कारण, आसक्ति और घृणा के कारण। तो ऐसे द्वंद्वों से प्रभावित होकर, मोहित होकर इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माएं जन्म लेते हैं। और यहाँ पर यह व्यक्ति इन समभाव के कारण, द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण, घृणा और आसक्ति के, आसक्ति से मुक्त होने के कारण ये सर्ग को जीत लेता है। ये एग्जैक्टली अपोजिट है उसके। तो बद्ध जीव इस भौतिक सर्ग में जन्म लेता है, सर्गे यान्ति परम तथा, इस भौतिक संसार में आ जाता है और ये व्यक्ति इस भौतिक संसार से परे चला जाता है। वो समभाव है, समभाव। तो क्या अर्थ है उसका, सर्ग इच्छा द्वेष का क्या अर्थ है, हम लोग जिस इस शरीर को या मन को आनंद देने वाली चीजों से हम लोग आसक्त रहते हैं और इस शरीर और मन को जो तकलीफदायी है उससे हम लोग उसको घृणा करते हैं, तो इसका कारण है हम लोग ये शरीर से अपने आप को पहचानते हैं, इसका यही बंधन का कारण है, भौतिक जगत जन्म लेने का यही द्वंद्व है, मोह है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मणि क्या है वो, थैर्जिता स्वर्गे ब्रह्म समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, और ब्रह्म में भी ये वो स्थित रहते हैं। और आगे इसके बारे में तात्पर्य के अंत में देखें, उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं, ये समभाव क्या है अभी अगला श्लोक में वर्णन आएगा, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके आगे बतलाए जाएंगे। न प्राप्स्यसे न प्राप्स्यसे प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि रसं मोडो ब्रह्म विद् ब्रह्मणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो यहाँ पर उसके लक्षण, प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार कलकत्ता में एक अमीर व्यक्ति था और उसके घोड़े को देखभाल करने वाला एक उसका सेवक था। एक दिन दोनों क्या किया, जाकर लॉटरी टिकट लेकर आए और वो अमीर व्यक्ति, स्वामी ने बाद में कहा कि तुमने 10 लाख का लॉटरी जीत लिया है और वो व्यक्ति उसको सुन के ही उसको हार्ट अटैक आ गया। तो वो ऐसा नहीं, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, वो इतना हर्षित हो गया कि ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जिसका बुद्धि स्थिर है, यहाँ पर इसको श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्थिर बुद्धि को वर्णन करते हैं। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए। पहला लक्षण है तो वो उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता है, वो देहात्म बुद्धि में नहीं रहता है उसका। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न ही शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यही स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। और उसके बाद में जो मोह रहित है और भगवत विद्या को, मोह रहित मतलब वही है, अपने आप को देहात्म बुद्धि समझना, देह समझना, भगवत विद्या को जानने वाला है। फिर से वह आ गया, हम लोगों ने परिचय परतत्व, वो 17वें श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया ना कि उसको वो साक्षात्कार होता है भगवान के साथ जो संबंध है। यहाँ पर वो भी परतत्व को जानने वाला क्या है, या भगवत विद्या को जानने वाला कौन है, वो ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को बली भांति जानने वाला है, जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता, वो अज्ञान है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है, ऐसे कहते हैं। तो और आगे, बाह्य स्पर्शेश सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बाह्य स्पर्श सशक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श सशक्त आत्मा, इसका अर्थ है स्पर्श सुख। स्पर्श सुख क्या है, वही मैथुन सुख, उससे वो क्या हो जाता है, आकृष्ट नहीं होता है। तो इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं है, विशेष करके स्पर्श सुख, मतलब स्पर्श सुख क्या है, वो मैथुन सुख है, एक दूसरे को क्या करना, दर्शन करना। तो से वो मुक्त, उसको उसमें कुछ आसक्ति नहीं रहता है। तो क्यों प्रभुपाद यहां पर अनुवाद करते हैं, वो इंद्र तृप्ति की सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, उसमें इंद्र तृप्ति में विशेष करके ये जो मैथुन सुख है वो प्रमुख है। भौतिक जगत में उसको सबसे ज्यादा सुख माना गया है, लोग उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दुनिया में सब उसके पीछे ही पड़े हैं बस, और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सके उतना उसको प्राप्त करो, ऐसे सोच रहे हैं। अभी उसके अभी हिट्रोसेक्स में नहीं हो रहा है, वो उसको संतुष्टि नहीं हो रहा है, इसलिए उसको होमोसेक्स में प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, यही स्पर्श सुख है ना, और कुछ नहीं है। तो तो ये सबसे बड़ा सुख है इस भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो क्या है, बहुत तुच्छ है। यन मैतन आदि ग्रह में भी सुखम ही तुच्छ है। खंडू यने न करो रिव दुख दुखम द्रप्यंत नेह कृपना बहु दुख बाजम खंडू तिवन मनसिजम विषहे तदी रहा। सो प्रहलाद महाराज वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील थे, वो देख रहे हैं इसको बहुत ही तुच्छ है करके। ग्राम्य दियों का जो ये सुख है, स्पर्श सुख है, वो तुच्छ है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। जिसको उसको ऐसे पूजा जाता है वैसे नहीं होता है। और भौतिकवादी भी इसलिए क्या है, उससे त्रस्त है। ऐसा नहीं कि उससे संतुष्ट है, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन वो लोग उनके अज्ञान के कारण उनको उससे परे कुछ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि मुझे ये प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है मेरे अंदर कुछ कमी है, इसलिए मैं कुछ और प्रयास करते रहूं, प्रयास करते रहूं, प्रयास करते रहूं। दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, ऐसे दुराशा में ऐसे जीवात्मा बद जीव बहुत सारा चीज प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से उस सुख को प्राप्त करने के लिए, क्या क्या नहीं करते हैं उसके लिए, है ना, दुनिया में। तो लेकिन क्या है वो, कुछ विशेष नहीं, तुच्छ है वो, तुच्छ है, उसमें कुछ विशेषता नहीं है। इस अबॉमिनेबल इट इज, आप जानते हैं ना, वो एक बार इंद्र को शाप दिया गया तो वो सुअर बन गया, तो सुअर प्रभुपाद जी ने एक कथा बताया, तो वो सुअर बन गया। सुअर बनने के बाद वो एक सुअरनी से, बहुत सुंदर सुअरनी से विवाह कर गया, क्योंकि इंद्र है तो उसके लिए हाई ग्रेड सुअरनी चाहिए उसको। हाई ग्रेड सुअरनी से जैसा विवाह किया और बहुत सारे बच्चा पैदा किया, और वो लोग भी बहुत सुंदर सुंदर थे, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है ना। तो लेकिन क्या हुआ, सब लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे। क्या हमारे बताने का तद्विरुद्ध हो रहा है क्या? हम चाहते हैं कि उससे कौन आशा आकर्षण हो जाए, लोग इससे उत्साहित हो रहे हैं। एनीवे, तो मैथुन जीवन के विरुद्ध सुनने के लिए ब्रह्मचारियों को आनंद आना चाहिए, वो ब्रह्मचारी का वास्तविक भाव। उनको ऐसा लग रहा है ये क्यों इतना बोल रहा है इसके बारे में, ऐसा लग रहा है तो वो दूसरे ये इस आश्रम में रहने के लिए योग्य नहीं, बस वो दूसरे मतलब ही इज इन अ रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग जगह पर है। तो वैसे वो सुअर बन गया, सुअर बनने के बाद क्योंकि इंद्र को पदवी को संभालने वाला कोई नहीं थे, फिर ब्रह्मा जी को चिंता हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का चिंता है ना दुनिया ये ब्रह्मांड को चलाना। फिर वो इंद्र के पास जो सुअर के शरीर में थे उनके पास आए, उनको पूछा हे इंद्र वापिस आ जाओ, मैं आपको फिर से इंद्र बना देता हूँ, ऐसे वो सभी देवताओं का राजा। तो इंद्र बोल रहा था कैसे छोड़ो ये सबको, इतना सुंदर स्त्री है, इतना सुंदर बच्चे है, सुंदर आवाज भी करते हैं, वो आवाज सुन के मैं कभी कभी मूर्छित भी होता हूँ। लेकिन काम गटर में जाके हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम सभी लोगों का ऐसा ही स्थिति है, क्योंकि अभी भी हमें ऐसे ये सुख को प्राप्त करने की इच्छा, इसको बार 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 ऋषभ देव ने कहा, यन्मय नायम देह देह बाजो नलो के कष्टान कामान अरते विड़बुजामे विड़बुजामे। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं दो प्रकार के स्वर होते हैं। ये एक क्या है, मल काने वाला स्वर, एक जंगली स्वर होता है जंगल में रहता है। दूसरा क्या है, मल काने वाला स्वर होता है वो शहर में रहता है, तो उसका आनंद है बस। ये कुछ विशेषता है ये इसमें कुछ नहीं, लेकिन बहुत आतुर है लोग इसके लिए। और वास्तव में हम लोग उसको देख सकते हैं, हम लोग भौतिकवादी लोग भी उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो नया नया कुछ ढूंढना चाहते हैं। वो ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहा है, इधर उधर जा रहा है, या नया नया तरीका को ढूंढ रहा है उसी को प्राप्त करने के लिए, वो स्पर्श सुख को। तो हम लोग थोड़ा बुद्धि उपयोग करके देखना चाहिए, ये लोग सुख नहीं है तो मैं कैसे सुख बनूंगा। लेकिन मूर्ख मन के प्रभाव में आकर, जो रैस्कल माइंड मन के प्रभाव में आकर, वो मन ऐसे कल्पना करता है, ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ऐसे सोचता है, मैं यशस्वी होऊंगा, मुझे प्राप्त होगा, ऐसे सोच के वो डूब जाता है वो गटर में वो कुछ नहीं। तो ये स्पर्श सुख है भौतिक जगत का, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, क्यों मुक्त हो गया है, इससे वो आकृष्ट नहीं होता है। अभी तो समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद अनुभव, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध हो व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ पर सुखम अक्षयम अश्नुते, सुखम अक्षयम असीम सुख, जिसका अक्षय नहीं होता है, वो रस हमेशा बहता रहता है वो। इसलिए यहाँ पर कौन सा श्लोक उल्लेख कर रहे हैं, यमुनाचार्य का श्लोक को उल्लेख कर रहे हैं। वो क्या कह रहे, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस दामणि रुद्यतम रंतुमासित। वो किससे, वो कह रहे, जब जिस दिन से मैंने भगवान कृष्ण की चरण कमलों के सेवा में लगा, उस दिन से मुझे नया 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 रस आस्वादन हो रहा है मुझे, ऐसे कह रहे। तो वो किससे संबंधित है इस श्लोक में, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख को भोगता है, उसे अतुलना है, इसलिए इस श्लोक को उल्लेख किया गया। और उसको कारण क्या हो जाता है, आप देखिए ये दोनों श्लोक कितना मिलते जुलते हैं, है ना। तो परब्रह्म के एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है, उसको नया 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 रस आस्वादन हो रहा है, इसके कारण वो भौतिक इंद्रिय सुख से आकृष्ट नहीं होता। वह इसलिए वो कह रहे कौन, यमुनाचार्य, तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठि विनम च। जब भी मैं नारी संगम करने की इच्छा करता हूँ, नारी संगम करना क्या है, वो स्पर्श सुख को प्राप्त करना। वैसे तो नारी सभी सुख को प्रदान करती है, बद्ध जीव, इसलिए स्त्री पुरुष का आकर्षण इस भौतिक जगत में क्यों इतना ज्यादा है, क्यों उसको सबसे बड़ा बंधन और दुख का कारण बताया गया है, स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण जो है, क्यों उसको बताया गया है। बहुत सारे चीज है भौतिक जगत में आनंद प्रदान करने के लिए, बहुत सारे आजकल तो नया नया चीज बनाता है ना, अपने फैक्ट्री में बना के उसको जाहिरात, ये खरीदो ये खरीदो, ये ले लो ये ले लो, वहां जाओ ये इधर जाओ, तुम सुख प्राप्त करोगे। लेकिन उससे सबसे ज्यादा जीव क्या है, अपोजिट सेक्स, स्त्रियों से आसक्त है, क्यों, क्योंकि वो सभी इंद्रियों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उसका रूप से आंक 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 को इंद्र तृप्ति मिलता है, और नासिक उसका सुगंधित शरीर को सूंघना चाहता है जीवात्मा, और जीवा को भी वो संतुष्ट करते हैं, वो अलग अलग व्यंजन बना के जीवा को संतुष्ट करती है, या वो लोग उसको क्या है, चुंबन देकर वो लोग उसका स्वाद को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, और उसका खान खान का भी उसका मधुर वाक्य उसको भी सुनने के लिए कोशिश करते हैं, उससे संतुष्ट होने के लिए कोशिश करते हैं। इसको वो कश्यप मुनि वर्णन करते हैं, वो शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचस्त्वा श्रवणामृतम हृदयम क्षूरदारावम स्त्री नाम को वेद चेष्टित। वो एक दूसरे तरीके से उन्होंने वर्णन किया। पहले वो वर्णन करते उनकी सुंदरता को, कैसे वो एक शरद महीने के, जो शरद महीना तो पूरा साल भर वो महीना बहुत सुंदर होता है, सब कुछ बहुत सुंदर, वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, सब कुछ खिल उड़ जाता है। भगवान ने भी रासलीला उस समय पर किया था ना, शरद पूर्णिमा के दिन, और उस समय कमल भी बहुत अच्छे वो खिलते हैं। तो शरद महीने के कमल के समान उसका मुख होता है, उससे वो देखने की जो दृष्टि की जो इंद्रिया है वो इंद्रिय तृप्ति मिल जाता है उसको। वचस्त्वा श्रवणामृतम, उसका वाणी क्या है, श्रवण करने के लिए अमृत के समान होता है। लेकिन स्त्री के हृदय के बारे में ये कश्यप मुनि नहीं बताया, बाद में वो उर्वशी भी नहीं भी बताया, उर्वशी ने भी बताया हृदय क्या होता है, क्षूरधाराव एक ब्लेड के समान होता है। क्यों, वो सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति में ही उसका वो अपने स्वार्थ भावना रहता है उसका। तो और इस भौतिक जगत को आपको बांध देते हैं। तो स्त्रियों को कौन समझा, ऐसे कश्यप मुनि बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे कवि है ऐसे कविता लिखते हैं उसको सुंदरता को गुणगान करते हुए, लेकिन वो लोग कभी भी ये स्त्री को समझा नहीं। वैसे पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, और स्पर्श सुख सबसे ज्यादा वो क्या है, स्पर्श सुख देती है वो सबसे ज्यादा। एक दृष्टिकोण से वो सब कुछ सभी इंद्रियों को संतुष्ट करती है, इसके कारण इस दुनिया में सबसे ज्यादा वो आसक्ति हो जाता है स्त्री के प्रति, जीवात्मा का। तो लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, वो क्षणिक है। क्या उसका सुंदरता हमेशा रहता है, नहीं रहता। जाके आपको बूढ़ी माँ को देखो, वो जब 16 साल की थी वो तो उसका सुंदरता देखो, अभी देखो उसको, नहीं रहता है, शाश्वत नहीं रहता है। और विवाह करते हैं लोग, सोचते हैं बहुत ही मधुर मेरा जीवन होगा करके, पहले 6 महीने ही बहुत ज़्यादा हो जाता है वो थोड़ा रस रहता है आरंभ में जब, क्योंकि वो रस क्यों है, वो भी मनोधर्म है, मानसिक कल्पना है, बहुत एंथुजेस्टिक। अभी मैंने नया विवाह किया है, नया जीवन है ना, उसके बाद में कुछ नहीं रहता है। 4 दिन की चांदनी वो कुछ और भी बोलते हैं ना, मृत्यु के विवाह से पहले चंद्रमुखी, बाद में सूर्यमुखी बन जाते हैं, सूर्यमुखी से ज्वालामुखी बन जाते हैं। है कि नहीं, क्या रहता है बाद में, है ना, कुछ नहीं रहता है। तो लोगों को देखो देखो वो संतुष्ट नहीं है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जानबूझकर उसमें देखते देखते भी पश्चन नपी न पश्यति, हम लोग देख रहे हैं लोग संतुष्ट नहीं है इसके कारण। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ आके बोलते हैं ना, प्रभु जी पहले ही हमें पता होता तो मैं भी विवाह नहीं कर पाता, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि अभी उनको महसूस हो गया, उनका अनुभव हो गया। लेकिन जो लोग उसको अनुभव नहीं किया है वो लोग बहुत उससे आकृष्ट रहते हैं। प्रभुपा जी वो कहते थे ना, दिल्ली का लड्डू जो नहीं खाया वो भी पछताया, और जो खाया वो भी पछताया। जो खाया उसने उसने किससे कैसे पछताया, क्यों खाया उसको, ऐसे पछताया, उसको बार बार उसको खाना पड़ता है। और जिसने नहीं खाया उसने क्यों नहीं खाया ऐसे सोचते। और जो लोग बुद्धिमान नहीं है, दूसरे वो हम आप चाहे तो उसका अर्थ और अलग से हम लोग बताएंगे। प्रभुपा जी ने उसको बार बार बताते थे ऐसे दिल्ली का लड्डू के बारे में। लेकिन एक बार अपने भक्तों के साथ ना रूम में उसका अलग अर्थ बताया, उसका क्या अर्थ है, उसको रिवीलिंग रिवीलिंग रिवील किया उसको, चाहे तो बाद में आ सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, जो विवाह करता है वो भी पछताता है और विवाह नहीं करता वो भी पछताता है। जो विवाह करता है वो पछताता है क्यों विवाह किया मैंने, और जो विवाह नहीं किया वो पछता है मैं क्यों विवाह नहीं किया से पछताता है। तो और जो लोग इसको ये पछतावा को अनुभव करके सीखना चाहता है वो कम बुद्धिमान लोग है। जो लोग उसको सिर्फ श्रवण करके समझते हैं वो बुद्धिमान लोग है। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उसको श्रवण करके ही समझना चाहिए उसको, और उसको देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं उसको, लेकिन स्वयं उसको अनुभव करना है तो उसका प्राइस देना पड़ेगा। तो प्राइस क्या है, बहुत भारी होता है। तीन प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को बताया है ना, पहले बुद्धिमान वो सिर्फ श्रवण करके समझ लेता है, दूसरा उसको अनुभव करके समझना चाहता है, तीसरा वो इतना मूर्ख है अनुभव करने के बाद भी समझता नहीं, ऐसा भी मूर्ख है इस जगत में। तो गृहस्थ जो होता है, गृहस्थ बनता है, विवाह जो करता है वो अनुभव करके सीखना चाहता है, उसको बताने के बाद भी, वो दूसरे स्तर का व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है, वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है। तो हमें फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन बनना, उसको श्रवण करके ही समझ, ठीक है। तो तदवधिपतन आर्य संघ में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठि विनम्र, ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद, ब्रह्म योगी या उसको ये शब्द ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ये शब्द भी आता है ना, ब्रह्म योग युक्त आत्मा मतलब जो ब्रह्म योग में लगा है वही कृष्ण भावना में, भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण है, पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रशिप में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रहती है, नहीं रह जाते है। तो भगवान कृष्ण में सेवा में हम लोग संतुष्ट रहते हैं तो हमें इंद्र तृप्ति से आकर्षित होने का जरूरत नहीं। भौतिक तक की दृष्टि के दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे ये काम सुख जो है सर्वोच्च, ये क्यों काम सुख का वर्णन कर रहे आपको पता है ना, हमने बताया ना स्पर्श सुख, यहाँ शब्द आता है ना बाह्य स्पर्शे सशक्त आत्मा, वो स्पर्श सुख मतलब ये मैथुन जीवन काम सुख। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकवादी लोग तो इसके बिना उनको प्रेरणा ही नहीं मिलता है काम करने के लिए कोई, वो जो है ये इस श्लोक के आधार पर है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम तयोरथो हृदय ग्रंथि माहु अत ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहोयम अहम मुनेति, ग्रह क्षेत्र सुता आप्त वित्त ये सब बड़ा बिल्डिंग कार ऑटोमोबाइल रोड सब विश्वविद्यालय बड़े बड़े फैक्ट्री सब कुछ क्यों है, इसके कारण कभी ना कभी मैं इस सुख को प्राप्त करूंगा या ये सुख मुझे प्राप्त होगा, इसके कारण ये लोग वो सब मेहनत कर रहे हो, नहीं तो कुछ मेहनत नहीं क्यों करेगा इस भौतिक जगत में मेहनत, है ना। तो भगवान इसलिए ये स्पर्श सुख में थोड़ा ऐसे आनंद रख दिया हूँ ताकि भौतिक बद्ध जीव है इस जगत में मेहनत करते रहे या प्रोजनी जनोत्पत्ति करे इस जगत में, तो ये वो प्लान था भगवान का। तो इसलिए काम कर रहे लोग, इसलिए मेहनत कर रहे, और कुछ नहीं मेहनत, वो मार्शल्स इकोनॉमिक लॉ इकोनॉमी है आप जानते हैं, वो मार्शल करके एक इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हैं तो फैमिली अफेक्शन इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो पारिवारिक स्नेह क्या है, आर्थिक विकास का कारण है, नहीं तो क्यों आर्थिक विकास करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ खा के वो शास्त्र अध्ययन करते बढ़ जाएगा, है ना, उसको क्यों चाहिए ये सब आर्थिक विकास करना, ये करना वो करना, जरूरत नहीं है। तो यही स्नेह, पारिवारिक स्नेह ही आर्थिक विकास का कारण है। तो उत्साह पूर्वक व्यक्ति या प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, वो नहीं है तो कोई कार्य नहीं कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपने कार्य करता रहता है। प्रभुपाद जी एक और कारण है क्यों ये लिख रहा है, क्योंकि एक पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद जी आरंभ किए ये आंदोलन और प्रचार करना, जब पाश्चात्य देश वाले उन्होंने सुना ये मीट ईटिंग नो इलिसिट सेक्स ऐसे सुना, उन्होंने व्यविचार नहीं करते, फिर आप लोग कैसे काम करते हो ऐसे वो लोग प्रश्न पूछते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोलते है कि कृष्ण भावनामृत इसके बिना भी बहुत उत्साह से वो काम करेंगे, क्योंकि उत्साह पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। आपको चाहिए काम सुख मतलब, और आत्म साक्षात्कार दोनों साथ में नहीं चल रहे, तो ये को चुनना है बस। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनये वते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है, लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः प्रचुर चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यही संस्पर्श, इस श्लोक में तीन चीज बताया गया है। पहले भगवान ये इंद्रिय सुख क्या है ये उसके बारे में बता रहे हैं। हम लोगों ने इसको पहले चर्चा किया ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, तो इंद्रियां और इंद्रिय वस्तु। इंद्रिय वस्तु कौन कौन से है बताइए, इंद्रिय वस्तु कौन कौन से है बताइए। शब्द रूप स्पर्श गंधा और रस, ये पांच इंद्रिय विषय है, और इंद्रिया हमेशा इन पांच इंद्रिय विषयों के पीछे पड़े रहते। कौन कौन से है पांच इंद्रिय विषय अभी बताया ना, बताओ बताओ। नहीं, स्वाद मतलब और रस दोनों एक ही है ना। शब्द स्पर्श रूप गंधा और रस, ये पांच इंद्रिय विषय है, तो इंद्रियां हमेशा इसके पीछे पड़े रहते इन इंद्रिय विषयों के बारे में। आंखें सुंदर रूप को देखना चाहते हैं, कान क्या है कुछ शब्द सुनना चाहते हैं यू नो म्यूजिक, और जीवा अलग अलग व्यंजन को आस्वादन करना चाहता है, और नासिकाएं तो कुछ सुगंध सुनना चाहते हैं, और जो त्वचा है वो स्पर्श सुख को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। तो ये क्या है, इंद्रिय विषय और इंद्रियां। जब ये दोनों का संसर्ग हो जाता है, कॉन्टैक्ट, तो क्या हो जाता है, थोड़ा कुछ ऐसे हमें रस प्राप्त होता है, उसको इंद्रिय सुख कहते हैं, इंद्र तृप्ति, प्रभुपाद जी सेंस ग्रेटिफिकेशन अंग्रेजी में नो कहा करते थे। तो इसको यहां पर भगवान वर्णन कर रहे, यही संस्पर्श जा भोग, लेकिन क्या बता रहे हैं, वो दुख का योनि है, दुख का योन है, दुख का माता है वो। तो बौद्धिक जगत में जब हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि बौद्धिक जगत में ये इंद्रिय भोग जितना कोशिश प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है जीवात्मा, उस हद तक वो दुख भोगना पड़ता है उसको। तो हम मैथमेटिक्स में ऐसे इक्वेशंस होता है ना, 2+2=4 या ऐसे कुछ ना सिंपल इक्वेशंस, ऐसे इंद्रिय भोग इज इक्वल टू क्या है दुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू मिजरीज, ऐसा इक्वेशन लिख लीजिए आप। तो ये इक्वेशन है ना, लोग यू नो इंद्र सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, क्या करता है नशा पान करता है, बहुत सारे उसके शरीर में रोग हो जाते हैं, या व्यभिचार करने के लिए हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं उसको STDs, तो ऐसे होते हैं। तो ये जितना वो करने के लिए कोशिश करता है लोग जीवात्मा इंद्रिय वो दुख का कारण बन जाता है। तो दुख का कारण बन जाता है, क्या हो वो तो सिंपल है ना, दुख का योन है ये बताएगा, इंद्रिय भोग इज इक्वल टू दुख। तो ये है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं, ये कुछ एग्जैगरेशन नहीं है, बड़ा चढ़ा के नहीं बोला जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं इसको अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे वो दुख का स्रोत है, और जब हम बेलगाम में थे एक बार एक स्टूडेंट आता था हमारे साथ, उनके पिताजी नहीं थे, वो हमने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बेलगाम के नज़दीक गोवा है ना, गोवा लोग जाते हैं वहाँ पर है ना, तो वो उनके पिताजी बैंक में काम करते थे, वो सभी बैंक वाले सभी जाके क्या किया, वो लोग वो गोवा में गए और सभी प्रोस्टिट्यूट्स के संपर्क किया वो लोगों ने, तो उसके कारण सभी को एड्स हो गए वो और मर गए। तो ये दुख का कारण है, सो यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं ये बताए, तो इसलिए वैदिक सभ्यता में इसको नियमित किया जाता था, तो ऐसा नहीं कि उसको सभी लोग बंद कर नहीं सकते है ना, इसलिए उसको नियमित तौर पर विवाह के द्वारा उसको नियमित किया जाता है। तो क्योंकि अंत में वैदिक सभ्यता उसको जानता उस यू नो ये ज्ञान के ऊपर आधारित है कि ये भौतिक जगत में सुख नहीं है, तो यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं बटे आद्यंतवंत कौनते या नतेश्वर मते बुरा, और क्या है उसका आदि है और अंत है, मतलब क्या है वो शाश्वत नहीं है, वो अस्थाई है, वास्तव में इस अस्थाई का अर्थ है वो बहुत ही क्षणिक है, जस्ट फ्लिकरिंग, इसको चपल सुख भी कहते हैं, चपल सुख, तो प्रभुपाद जी उसको चपल सुख कहते हैं, उसका आरंभ होता है अंत होता है। तो पहले ये क्या है उन्होंने उसका परिभाषा दिया, दूसरा वो दुख का स्रोत है, और तीसरा इसका अंत आरंभ होता है और अंत होता है, वो शाश्वत नहीं रहता है, तो और चौथा बता रहे हैं नतेषु रमते बुद्धः, जो बुद्धिमान लोग हैं इसमें आनंद नहीं लेते हैं ऐसे कहते हैं। तो और भी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्या है ये सब ब्रह्म है बस, इसे इल्यूजरी हैप्पीनेस कहते हैं उसको, अंत में भौतिक सुख क्या है इल्यूजरी हैप्पीनेस। तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं क्यों ये सिर्फ ब्रह्म है, तो क्यों है, क्योंकि इस जगत में जो दुख है उसको ही लोग क्या कहते हैं आनंद मानते हैं, सफरिंग इज कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस, कैसे लोग इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके उसको या दूसरे शब्द में वो प्रभुपाद जी वो उदाहरण देते थे ना, वो कैमल ऊंट का उदाहरण देते थे, ऊंट क्या करता है वो कैक्टस लीफ को खाता है जो जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, और जब वो छुप जाता है उससे उसके जिह्वा से रक्त आता है, और रक्त वो मिलकर क्या हो जाता है उसको स्वादिष्ट लगता है, तो वास्तव में क्या है वो सफरिंग है, लेकिन फिर भी जीवात्मा सोचता है कि वो आनंद ले रहा है, हमें बाद में पता चल जाएगा। तो जैसे खुजली करते हैं हम लोग, उजली ऐसे लगता है कि आनंद दे रहा है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है, तो वो क्षणिक थोड़ा ऐसे बहुत हमें महसूस होता है आनंद का महसूस, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो बहुत गाव हो जाता है। वुंड मीन्स गाव, सो गाव हो जाता है। तो ये सफरिंग इज कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ये पहला कारण है क्यों ये भौतिक जगत, भौतिक सुख क्या है, इल्यूजरी है, वो भ्रामक है, भ्रम है, चिम है। और दूसरा कारण है इस जगत में लोग जो मेहनत करते हैं, वर्किंग हार्ड इज कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस, तो बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर, ये भौतिक जगत का लक्षण ही होता है कि यहाँ पर परिश्रम करना पड़ता है, तो उसको ये लोग आनंद समझते हैं। तो ये क्यों होता है, पैशन, लोगों में पैशन होता है, पैशन रजा रजस, तो उसके कारण वो मेहनत करना उनको आनंद मिलता है। एक बार हम लोग पुस्तक वितरण करने के लिए, भगवद गीता वितरण करने के लिए गए थे, वो पार्ले जी कंपनी है ना, तो वो बंगलोर में है, बंगलोर में, तो वहाँ पर वो एक माता थी, उन्होंने क्या कहा हमारे एक भक्त को, वो आपके मंदिर, मैं बॉम्बे से हूँ, आपके मंदिर जाता जाया करती थी, वहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है वहाँ पर, तो ऐसे क्या कहा उन्होंने, बाद में उन्होंने कहा अभी मैं बेंगलोर में आई हूँ, लेकिन मैं मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग बहुत क्या है लेजी है बोलते हैं। तो लेजी है मतलब भारत में पहले जमाने में उतना क्या है, वो जीवन बहुत सरल था, इसलिए ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करते थे, वो आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते थे हमेशा, तो या गीता भागवत रामायण से या महाभारत से सुना करते थे, श्रवण किया करते थे। तो दक्षिण भारत में वो ऐसा संस्कृति था, अभी नहीं है। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, लोग मेहनत करने में आनंद लेते हैं, तो क्योंकि बॉम्बे में क्या होता है, पैशन 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 है ना। वो एक बार बम विस्फोट हो गया ना इधर उधर वो रेलवे स्टेशन में, अगला दिन ही आप लोकल ट्रेन पूरा बना रहता था, तो वो न्यूज़पेपर में वो ऐसे लिखा गया था है ना, बॉम्बे को कभी रोक नहीं सकते आप, बॉम्ब भी नहीं रोक सकता, ऐसा कुछ लिखा था। वो उनका पैशन है बॉम्बे लोगों का, तो इसको भी आनंद सोचते हैं लोग, है ना। एक बार एक माता, एक और माता थी, उनके पति ने उनको क्या कहा, ये विवाह से पहले हो, अभी आप काम करना बंद कर दो, जरूरत नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं कमाता हूँ, ऐसे उन्होंने बताया, तो वो छोड़ दिया उन्होंने उनके इच्छा के अनुसार। वो एक महीना डिप्रेशन में थी वो। क्यों डिप्रेशन में थी, क्योंकि काम नहीं है करके। ऐसे लोग वो इस इतना कंडीशन हो जाता है, वो मेहनत करने में, काम करने में, उसको उनको उसमें आनंद आता है, उसको जब रोक दिया तो क्या हो जाता है, उनको आनंद नहीं होता है। तो इसको ये एक भ्रम है, मेहनत करना वो लोग आनंद सोचते हैं, इसलिए ये एक भ्रम, भौतिक सुख क्या है, एक भ्रम है, ये कल्पना है मन में। और तीसरा है इस भौतिक जगत में दुख को प्रतिकार जो करते हैं उसको हम लोग सुख समझते हैं। भौतिक जगत में बार, भौतिक जगत का लक्षण है दुख का स्थान है, दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने बताया भगवद्गीता में, बार बार दुख आते रहते हैं या समस्याएं आते रहते हैं, और ये लोग उसको प्रतिकार करते रहते हैं, उसको ये लोग जब उसमें थोड़ा यशस्वी हो गए तो उसको आनंद सोचते हैं। तृतीय स्कंद में कपिल देव भी बताते हैं अपने माता को, देवती को, कुर्वन दुख प्रतिकारम सुखम मन्यते ग्रही, जो ग्रही है विशेष करके गृहस्थ जीवन में ऐसे होता है ना, बहुत समस्याएं आते रहते हैं, बार 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 आते रहते हैं, और ये व्यक्ति क्या सोचता है, वो अपने घर का मालिक समझता है, और ये मेरा जिम्मेदारी सोचता है, वो अहंकार के कारण उस समस्याओं का वो हमेशा उसको सुलझाने में लगा रहता है, और वही जीवन उसका रहता है। जीवन के अंत तक ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में क्या होता था, 50 साल के बाद अभी क्या करो, वन में ही प्रवेश करो, वानप्रस्थ ले लो, अभी बहुत हो गया तुम, बहुत ये भौतिक जगत के समस्याओं को सुलझाने में बहुत प्रयास किया, अभी बस। पंच षोडम वनम रजेत, 50 साल में वन में प्रवेश करना ही चाहिए। रजेत मतलब इट इज इन इम्पेरेटिव सेंस, इट इज मतलब आप जानते हैं इम्पेरेटिव सेंस मतलब वो फोर्स ही कहा गया है, क्योंकि इस दुनिया के समस्याओं को हम हल नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक सीमा होना चाहिए। तो इसको जब थोड़ा यशस्वी हो जाते हैं, एक समस्या को वो हल कर दी, को आनंद मिल जाता है, तो इसलिए इसको आनंद मानते हैं, लेकिन वास्तविक वो आनंद नहीं है। तो आप सिर्फ यू आर फायर फाइटिंग, तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है, ये बार बार जब समस्या आते रहते हैं, ये दो समस्याओं के बीच में जो अंतर जो रहता है उसको सुख समझते हैं। गैप बिटवीन टू मिजरीज इज कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ना, तो पहले जमाने में जब कोई ऐसा को क्रिमिनल कार्य करता तो राजा लोग कैसे उसको दंड देते थे, उसको पानी में डुबोते थे उसको, और अभी वो श्वास बंद होके मरने ही वाला होता है, थोड़ा समय के लिए उसको ऊपर उठा देते ताकि एक क्षण वो श्वास ले सके और फिर से उसको डुबा देता, तो ऐसे दंड दिया जाता था, बार बार उसको ऐसे किया जाता। तो हमें माया शक्ति क्या कर रहा है, हमें ऐसे कर रहा है, तो बार बार समस्या के बाद ऐसे समस्या आते रहते हैं, और बीच में थोड़ा गैप मिल गया तो क्या करते हैं, उसको आनंद समझते हैं। जैसे हम विद्यार्थियों को बोलते हैं, बार बार एग्जामिनेशन आते रहता है, बीच में जब एग्जामिनेशन नहीं रहता है तो वो लोग बहुत उसको आनंद समझते हैं, राहत मिल जाता है। तो ऐसे होता है जीवन में, गैप बिटवीन टू मिजरीज इज कंसिडर्ड एज हैप्पीनेस, बट एक्चुअली दैट इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज जस्ट गैप इट इज। और उसके बाद अगला कारण है क्यों ये इल्यूजरी हैप्पीनेस है, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि एक मृग छाया के समान है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल हैप्पीनेस, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है, वास्तविक सुख नहीं है इस जगत में। मृग छाया के समान, आप जानते हैं ना मृग छाया, या वो रेगिस्तान में या ऐसे धूप के सीजन में आप रास्ते के ऊपर भी ऐसा लगता है कि पानी है करके, लेकिन पानी नहीं रहता है। तो इसलिए ये वास्तविक सुख नहीं है, लोगों को वास्तविक सुख का अनुभव नहीं है, लोग ऐसे ही जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब जो है उसको ही सुख मानते हैं, है ना। भगवान भी भगवद्गीता में वर्णन किया ना, ये भौतिक जगत क्या है, ये प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, वो एक अश्वत्थ वृक्ष से उसको तुलना करते हैं, जिसके जड़े ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। वैसे वृक्ष तो सिर्फ हम लोग पानी में देखते हैं, उसका प्रतिबिंब देखते हैं, जो पानी के तट पर जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब हम लोग पानी में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जड़े ऊपर है और शाखाएं। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है, आप आम का जो प्रतिबिंब वहां पर देख रहे हैं पानी में, आप सोचेंगे कि यहाँ पर आम मिलेगा करके पानी में छलांग मार देंगे तो आम नहीं मिलने वाला है, सिर्फ प्रतिबिंब है। वैसे ही रेगिस्तान में पानी नहीं मिलने वाला, तो सिर्फ छाया दिखाई देता है उसका। तो इसलिए ये छाया है, भौतिक सुख क्या है, ये छाया है बस। और उसके आगे और उसको इसी उदाहरण को हम लोग लेंगे तो सिर्फ आशा, इट्स अ होप आफ्टर होप, एक निराशा है भौतिक जगत में ये जो। तो आप देखेंगे इसी उदाहरण को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग वो रेगिस्तान में पशु जो है जब इस मृग इस छाया को देखता है, पानी के छाया उसके पीछे पड़ता है पानी, क्योंकि वो प्यासा रहता है, और ऐसे वो क्या है, वो सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, या पानी को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे 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 जाता है। और बहुत ऐसे जाने के बाद भी जैसे वो जाता है वो भी छाया भी ऐसे आगे बढ़ता है। तो कभी वो भागता है भागता है भागता है भागता है, लेकिन अंत में उसको पानी नहीं मिलता है, तो फिर गिर जाता है, मर जाता है। लोग ऐसे ही इस जगत में भागदौड़ कर रहे हैं, वो भाग रहे इस भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी ऐसे उनको लगता है कि बहुत ही नजदीक है, मेरे नजदीक ये एक समस्या हल ना सुलझाए और तुरंत ही मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसे हम भी सोचते थे। ये स्कूल जब खत्म हो जाएगा, जब कॉलेज में हम प्रवेश करेंगे तो बहुत सुखी प्री बर्ड बन जाएंगे। ये बहुत टीचर लोग बहुत तंग करता है, कॉलेज में आने के बाद ये सब समस्या नहीं रहेगा, ऐसे ऐसा सोचता है लोग, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है। सिर्फ वो ऐसे होप आफ्टर होप आशा है। तो वास्तविक ऐसे लोग इसके पीछे पड़ के वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं बस, और कुछ नहीं प्राप्त करते, सुख प्राप्त नहीं होता, मृत्यु प्राप्त होता है। और इसके बाद हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज अ फैंटसी। फैंटसी मतलब क्या बोलते हैं इसको, मनोधर्म या मनोकल्पना है। ये सार है ये सभी विश्लेषण का, ये पॉइंट जो है वो सभी सार है, क्योंकि सब में ये मनोकल्पना आता है, फैंटसी है। इसके लिए उदाहरण हम लोग क्या देखेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, वो एक हमने बताया ना उस दिन, वो एक व्यक्ति था वो अपने झोपड़ी में सो के वो दिन में वो स्वप्न देख रहा था कि मैं मेरा जो ये जो घड़ा है दो घड़ा उसको बेच के मैं और भी खरीदूंगा, और उसको खरीद के क्या करूंगा उसको बेचूंगा, ऐसे बहुत अमीर बन जाऊंगा, और एक अमीर परिवार से मैं विवाह करूंगा, स्त्री का विवाह करूंगा, वो मेरा सुनती नहीं है तो क्या करूंगा उसको ऐसे लात मार दूंगा। ऐसे लात मार दिया, दो गड़ा जो है वो भी टूट गए। ऐसे दिन में स्वप्न देखता रहता है वो सिनेमा में जाके बैठता है और सिनेमा चलता रहता है, वो हीरो हीरोइन वो पेड़ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं हीरोइन, और ये लोग जो बैठ के वो देखता है वो सोचता है कि ये हीरोइन मेरे पीछे भाग रही है, इसलिए उसको देख के आनंद होता है। ऐसे कल्पना है, कल्पना करता है, फैंटसी बोलता है। और जब वो ऐसा कोई सीन आ जाता है, वो कोई हीरोइन को चुरा के ले गए, उसको दुख लगता है, वो आंसू बहना शुरू कर देता है। क्या वास्तविक है वो सिनेमा जो चल रहा है वो वास्तविक है क्या? वो नहीं है वास्तविक, सिर्फ ये ऐसे कल्पना कर रहा है अपने मन में, ऐसे हो रहा है मेरे साथ, ऐसे हो रहा है करके अपने आप को उस स्थान में डालता है और सोचता है कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ करके। ये बहुत ही जगत के सुख दुख है बस। हम अपने आप को ये शरीर से पहचानते हैं, अलग अलग जब जन्म लेते हैं तो अलग अलग पहचान बनाते हैं। ये पहचान बनाने के कारण हम लोग क्या कहते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं उस मनोधर्म के कारण। तो ये कितने हो गए, 7 पॉइंट्स। तो और अंतिम क्या है, ये भौतिक जगत में सुख हमें, भौतिक सुख क्या है, कभी भी संतुष्टि नहीं देते हैं। हम लोग उसको अनुभव करके ऊब जाते हैं, लेकिन हम लोग उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। वो सेटिस्फैक्शन एंड सैशिएशन दो शब्द है ना अंग्रेजी में भी, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि और सैशिएशन मतलब ऊब जाना। जैसे एक उदाहरण, आप गुलाब जामुन खाते जा रहे हैं, 3-4 खाने के बाद आप ऊब जाएंगे, हालांकि खाने की इच्छा रहता है, संतुष्टि तो नहीं होता है लेकिन खा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शरीर हमें उसको साथ नहीं देगा। तो ऐसे भौतिक सुख हम लोग उसको कभी संतुष्ट नहीं लेकर आता है, संतुष्टि नहीं लेकर आता है, लेकिन उसको कर नहीं पाए, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये लेकिन आध्यात्मिक सुख क्या है, कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति में जो सुख है वो अलग है। तो ये सब भ्रम है। ऐसे बहुत कुछ हम लोग इस भौतिक सुख के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान दो चीज बता रहे हैं, 3 चीज बता रहे हैं बेसिकली, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको वो इसमें आनंद नहीं लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेते, और यह क्षणिक है और ये दुख का कारण है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पद्म पुराण के श्लोक, पद्म पुराण ना या विष्णु पुराण, पद्म यहाँ पर लगा है ना वो बाहर, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्य आनंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्माभिधीयते। तो परब्रह्म का अर्थ नाम क्या है, राम है, वो कृष्ण या राम है, परब्रह्म क्यों है, वो आनंद का सागर है। जो योगी लोग हैं जिनको यहाँ पर बुद्धिमान कहा गया है, जो भौतिक सुख में आनंद नहीं लेते हैं, वो बुद्धिमान लोग योगी लोग वो कैसे आनंद को प्राप्त करते हैं, ये जो श्लोक उल्लेख किया गया ये इसका तद एग्जैक्टली तद विरुद्ध है। ये समझ में आ गए, ये भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं उसके तद विरुद्ध है एग्जैक्टली। इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे भौतिक सुख का वर्णन आ रहा है, और ये पद्म पुराण के जो श्लोक है वो दिव्य भक्ति के जो आनंद है, आध्यात्मिक सुख का, दिव्य सुख का वर्णन हो रहा है। तो हम लोग इसको स्पर्श सुख, भौतिक सुख क्या है, स्पर्श सुख है। यहाँ पर बुद्धिमान भगवान बोल रहे बुद्धिमान चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लगा, और चतुर व्यक्ति कौन है, वो योगी है। रमन्ते योगिनो अनन्ते, फिर किसमें आनंद लेते हैं वो, सत्यानंद चिद आत्मनि, चिद आत्मनि मतलब अपने दिव्य आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा वो आनंद को प्राप्त करते हैं। ये भौतिक सुख क्या है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं, यही संस्पर्श जब होगा। हम लोगों ने चर्चा किया ना, भौतिक सुख क्या है, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बीच में स्पर्श, और इंद्रिया ये अस्थाई है, इसलिए ये जो सुख भी क्या है अस्थाई होगा। लेकिन ये लोग सत्यानंद चिदात्मनि, चिदात्मनि मतलब आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा वो ये दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो क्या है, वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, और भक्ति का जो आनंद है वो आध्यात्मिक है, चिदात्मनि इसलिए। और सत्यानंद, वो सत्य आनंद है, सत आनंद, सत का परिभाषा हम लोगों ने देखा ना पहले, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, वो सत है। जो अस्थाई है, जिसका आदि और अंत है, वो अस्थाई है, वो हमेशा नहीं रहता है। इसलिए ये जो सुख है सत्यानंद है, जो योगी जन रमण करते हैं, और भौतिकवादी जो सुख प्राप्त करते हैं वो अस्थाई है। सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेश, और वो रमन्ते योगिनो अनन्ते, अनन्ते शब्द वो भी, सॉरी माफ कीजिए, सत्यानंद वो दुख का सा कारण नहीं बनता है, लेकिन भौतिक सुख क्या है, दुख का कारण बनता है। और अनंत शब्द क्या है, वो अनंत है, अनलिमिटेड है, उसका आदि और अंत नहीं है। तो ऐसे वो शब्द एक दूसरे से संबंधित है, उसका आप इसका इक्वेशन, ये दोनों श्लोकों का भी इक्वेशन बना सकते हैं, क्या क्या है करके इसका भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे अभी हम चर्चा किए ना, नतेषु रमते बुद्धा, मतलब जो योगी जन है, बुद्धा मतलब कौन है, यहाँ पर योगी है, रमन्ते योगी नो अनन्ते, और अध्यंतवंत मतलब वो कैसे बोलते हैं ना, वो अपोजिट क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा टेबल रहता है ना, विरोध, अपोजिट वर्ड्स यू नो, हम लोग उसका टेबल बनाते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, एनीवे आप समझ में आ गया ना, छोटे बच्चे करते रहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं इसको भी। तो फिर ये बाबत का श्लोक है, नायम देह देहबाज नरलोके कष्टान कामान अरते विड़बुजा में तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो नंदम। इसमें मनुष्य जीवन में हमें ऐसे इंद्र तृप्ति में हमें नहीं लगना चाहिए जो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है, ऐसे कष्ट करके उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए जो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है, आहार निद्रा भय मैथुनम, वो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है, हम लोग ये उसी में ज्यादा रुचि रख रहे हैं, वो मनुष्य जीवन का क्या है लक्षण नहीं है। तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये नाम, ये मेरे पुत्रो दिव्य तप करो, जिसके द्वारा अपना चेतना जो है या अस्तित्व शुद्ध हो जाता है, जिसके कारण यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, आपको अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह श्लोक उल्लेख किया जा रहा है, यह भौतिक सुख क्या है वो अनंत नहीं है और दुख का कारण है। ये क्या है? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तो अनंत ब्रह्म सुख है। तो ऐसे तो श्रील प्रभुपाद भौतिक इंद्र तृप्ति इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हो जाता है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। शरीर इंद्रियों से बना है, शरीर अस्थायी है, इसलिए इंद्रियां अस्थायी है, इसलिए इंद्रिय सुख भी अस्थायी है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, दिव्य आनंद में सुख से बली भांति अवगत वह बला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? तो फिर ये दोनों श्लोकों को उल्लेख करते हैं पद्म पुराण और भागवत से। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी ही ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं रहते होता, क्योंकि वे ये निरंतर गौरव का कारण है, गौरव के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो दुख यो नया ये बताए। तो अगला श्लोक, शक्नोति हैव काम क्रोधोद्भवं योगं सयुक्ता स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने के तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो किसी को पता है कितने सारे वेग हैं? तो कौन कौन से हैं? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये छह प्रकार के वेग है। वाचो वेगम, हम लोग जब भी कोई दो लोग मिल जाते हैं तो अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं, पीपल टॉक ऑल नॉनसेंस, है ना। तो ऐसे दुनिया के चीजों के संसारी बातों में लग जाते हैं लोग, और वो बोलने की प्रवृत्ति इतना रहता है। इस भौतिक जगत में कई सारे समस्याएं, इसके ज्यादा से ज्यादा समस्याएं इसके कारण, वो कुछ किसी को बोल देता है, वो अभी कम्युनिकेशन का यू नो प्रगति होने से इसका बढ़ोतरी हो गया। तो ये वाचो वेग है। और मन का वेग, जब हम लोग ऐसे बकबक बकबक करते रहते हैं तो मन भी विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। तो वो मन क्या है? कोई नियंत्रण के बिना इतना मनोधर्म में, मानसिक चिंतन में लग जाता है, जो जरूरी चीज नहीं है उसके बारे में सोचना शुरू कर। तो इसको मनवेग कहते हैं। और क्रोध वेग, जब मन संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, हमारे इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती है तो क्रोध आ जाता है, क्रोध वेगम, क्रोध के कारण लोग क्या क्या नहीं करते है ना। तो क्रोध वेग है। उसके बाद जिह्वा वेग, जिह्वा का वेग होता है, अलग अलग व्यंजन को खाना चाहता है। और उदरपस्थ वेग, पेट का वेग, वो भूख, ऐसा नहीं कि एक बार पेट में कुछ डाल दिया तो हमेशा के लिए और कुछ डालने का जरूरत नहीं है, तो नहीं, वो डिमांड करता रहता है ऐसे। तो उदरपस्थ वेग, फिर उसके बाद में जननेन्द्रियों का वेग, विशेष करके ये तीनों जिह्वा वेग और उदरपस्थ वेग तीनों एक ही लाइन में रहते हैं। जब जिह्वा को संतुष्ट करेंगे फिर क्या है, तो वो पेट बड़ा हो जाता है और वो जननेन्द्रियों के ऊपर दबाव लाता है। तो ऐसे ये सब वेग जीवात्मा को खींचते रहते हैं संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करके, तो इनको सहन करना होता है। एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि माम प्रतिबिंब शिष्यात्। इन वेगों को जो सहन करता है उसको धीर कहते हैं। एतान विषहेत धीरः, विषहेत मतलब सहन करना। वो डिमांड करते रहेंगे, जब तक शरीर रहेगा तो डिमांड करते ही रहेंगे ना वो, लेकिन उनको सहन करना होता है। वहां पे प्रहलाद महाराज भी हम लोग उस श्लोक की चर्चा कर रहे थे। खंडू यने न करयोर इव दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख बाजाम खंडू तिवन मनसिजम विषहेत धीरः। वहां पर भी विषहेत धीरः कहा गया। तो इच्छाएं आते हैं तो उनको सहन करना पड़ेगा, तो वही उसके लिए हल है। और जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो तब वो सभी इच्छाएं कम हो जाएंगे, भगवान की सेवा करने की इच्छाएं बढ़ जाएंगे, आध्यात्मिक इच्छाएं। तो तब तक तो उसको सहन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? वही सोल्यूशन है। या और यहाँ पर तथा इच्छा एवं क्रोध की वेग को रोकने में समर्थ होता है, विशेष करके यहाँ पर इच्छा और क्रोध के वेग को, क्योंकि यही इच्छा ही क्या है, मूल कारण है सब वेगों के लिए। और इच्छा को नहीं संतुष्ट करते हैं तो क्रोध आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों को साथ में बताया गया। और इच्छा को संतुष्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है और इच्छाएं बढ़ जाते हैं, इच्छाएं कम नहीं होते हैं। जैसे हम लोग अग्नि में ईंधन डालते हैं जैसे, तथा इच्छा एवं क्रोध को, क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो उस व्यक्ति को गोस्वामी कहते हैं श्री प्रभुपाद यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद अंत में भी ये भी वर्णन दे, जो आध्यात्मवादी है उनको बहुत ही कड़ाई से इन इंद्रियों को निग्रहण करना चाहिए। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इच्छाओं के वेगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा चीज यहाँ पर विशेष करके कहा जा रहा है कि मृत्यु से पहले, शरीर त्यागने से पहले हमें इन सभी से मुक्त होना चाहिए इनको। तो एक भी इच्छा है तो प्रभुपाद जी का कहते हैं ना, वापिस आना पड़ेगा। ये वेग है, वेग वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी तथा मन को वश नितांत संयमी जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित हो जाते हैं। तो है ना, उसका अनुभव होता है ना, जब क्रोध हो जाता है तो मन नेत्र और वक्षस्थल उत्तेजित हो जाते हैं, आंखें भी लाल लाल हो जाते हैं ना क्रोध होता है। अतः उस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वही सुखी रहता है। योगी को का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने में बरसक प्रयत्न करे। व्हाट इज दैट? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट टू ट्राई स्ट्रीनियसली कंट्रोल डिजायर एंड एंगर। अगला श्लोक, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्ततान्तर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोति गच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। हम लोग पहले ब्रह्म निर्वाण का चर्चा किए थे ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी वो लोग निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं। निर्वाण का उनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार सभी कार्यों को बंद करना, शून्य कर देना, शून्यवाद, उनको शून्यवादी भी कहते हैं। लेकिन वास्तविक कार्य है वो भौतिक कार्यों को अंत करने के बाद आते हैं, वो आध्यात्मिक कार्य, तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य। तो ब्रह्म भूतोधि गच्छति, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि हमारा शाश्वत जीवन होता है, वहाँ पर शाश्वत कार्य होते हैं। लेकिन सभी लोग शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस जगत में, तो वही उसके लिए प्रमाण है ना। तो ब्रह्म भूतोधि गच्छति, तो अंततो गत्वा वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक वह भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाले बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। इसको हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं ना। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब ऊंचा आनंद प्राप्त हो जाता है तो ऐसे बाह्य सुख को त्याग देते हैं। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मनोभाव से बैठकर अंतकरण में जीवन कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसे मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाते, जिसे प्राप्त करने पर भगवद्धाम जाना निश्चित है। ब्रह्मन ब्रह्मभूतो विगच्छति ब्रह्म निर्वाणम, मतलब भगवद्धाम वापिस जाना। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः चिन्नद्वैदा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। क्या हुआ या तो यहाँ पर लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः, तो क्षीण कल्मषः तो कल्मश को कम क्षीण कल्मष समस्त पापों से रहित है, मतलब इस भौतिक जगत में इंद्र श्रुति की जो कार्य है उसको कम करना चाहिए। तो क्षीण कल्मष उसको कम करना है या उसको पूरी तरह से खत्म कर देना है। तो अन्याविलाषिता शून्यम कहते हैं ना उसको। तो और इसको प्रॉपर वो उदाहरण देते थे, एक बार एक वो क्या है एक स्त्री थी और उनका एक मेड सर्वेंट थी। वो क्योंकि बहुत ही अमीर थी वो स्त्री, वो हमेशा वो ऐसे सोचती थी कि मुझे क्या होना चाहिए, इस जो सेविका है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए सब कुछ। एक बार दोनों क्या है वो बुखार हो गया उनको, दोनों को बुखार चढ़ गया। तब डॉक्टर ने बताया आपको 100 डिग्री बुखार है, टेम्परेचर है, और आपकी जो सेविका है उनको 102 है, ऐसे बताया। तो तुरंत इन्होंने क्या किया, मुझे क्यों कम, मुझे उनसे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये मतलब भौतिक जगत में क्या है, हम लोग ये भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक भोग को बढ़ाकर हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो वो है। लेकिन वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, हमारा इंद्र भोग का जो टेम्परेचर है वो कम करना चाहिए। क्षीण कल्मष इसलिए। तो जब ऐसे व्यक्ति इंद्रिय भोग को कम कर देता है तो क्या हो जाता है, अपने आप चिन्न द्वैत यथात्मनः, समस्त पापों से छिन्न द्वैत, द्वैत से निवृत्त होकर यत आत्मनः आत्म साक्षात्कार में मिरत सर्वभूत हिते रतः,
वो सभी जीवों के कल्याण करने में लग जाते हैं। उसका अर्थ क्या है, जैसे आप लोग सभी जीवों के कल्याण में रथ है ना, जीवों को प्रचार करने में लगे, तो इसको सर्वभूत हिते रतः कहा गया, हिते रतः सर्वभूत हिते। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण बाणामृत को प्रचार करना सबसे, ये आत्म साक्षात्कार के जो विज्ञान है उसको प्रचार करना क्या है, सबसे कल्याणकारी कार्य है। वो स्वयं हुआ इंद्रिय सुख से, इंद्रिय सुख और पापों से मुक्त है, वो क्यों फिर से जीवों को इंद्रिय सुख देने में लगा रहेगा। समझ में आ गया मेरा तर्क, क्या तर्क बता रहे हूं। तो इसलिए ऐसे वो समाज सेवा में, ऐसे देश सेवा में या मानव सेवा में नहीं लगता है, वो उनको मानव सेवा में लगता है लेकिन वो आत्म साक्षात्कार के जो ज्ञान है उसको प्रदान करने में लगता है, क्योंकि उसको पता है कि इंद्र तृप्ति के टेम्परेचर बढ़ाने से किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला, ना ही उनका लाभ नहीं होने वाला है या दूसरों का लाभ होने वाला। तो इसलिए ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करने या कृष्ण भावनामृत को देना ही सर्वोच्च सर्वभूत हिते रहता है, तो वो हमें समझना चाहिए। तो भक्ति को रूप गोस्वामी शुभदा एक लक्षण बोलते हैं, शुभदा। शुभदा क्या है, वो सबको मंगल करने वाला है, मंगलमयी है। तो क्यों मंगलमयी है, उसके लिए वो चार कारण बताते हैं। तो एक है भक्ति शुभदा है, मंगलमयी है, क्योंकि वो सबको आकर्षित करता है, पहला कारण है। दूसरा है वो आनंद प्रदान करने वाली है, और तीसरा है जो लोग इसको स्वीकार करते हैं उनमें सभी अच्छे गुण प्राप्त हो, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणै तत्र समासते सर्व। और चौथा वो बताते हैं कि वो मैं अलग सीक्वेंस में बताया, क्योंकि हमारा क्या है वो चौथा चीज को हमें चर्चा करना, वो सबसे हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है कृष्ण भक्ति, ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इससे सभी का कल्याण हो जाता है। तो इसको देना ही सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है या मंगलमय कार्य है, अन्य कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य हो नहीं सकते है। हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे ना कि जो मानव सेवा या ऐसे कुछ समाज सेवा कुछ लोग करते हैं उससे क्या समस्या है, इसके बारे में उससे नास्तिकवाद बढ़ जाता है और जीव हिंसा होता है। तो ये व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार में रत है, जो इंद्रिय सुख को त्याग दिया, क्यों फिर से ऐसे कार्य में लगता है। जब श्रील प्रभुपाद पुणे गए थे, पुणे वहां पर एक व्यक्ति के, वो हमारे वेल विशर थे, उनके घर में रहे थे श्रील प्रभुपाद। वो एक दिन उन्होंने, वो प्रभुपाद जी अलग अलग शहर में घूमते थे, क्योंकि शहरों में वो मतलब वो घूमा करते देखने के लिए जाते थे, क्योंकि वो उनको अलग अलग सेंटर स्थापना करना था, मंदिर स्थापना, इसलिए ये योग्य जगह ढूंढना चाहते थे वो शहर में। तो उनको लेके गए अपने कार में, वो चलते चलते वो मल्होत्रा जी ने उन्होंने बताया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी उन्होंने पूछा, आप बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बना रहे हैं क्यों ना आप कुछ समाज सेवा करते हैं, ऐसे उन्होंने पूछा। फिर प्रभुपाद जी ने उनको एक कथा बताया, आप बहुत अमीर हो, आपके मित्र बिरला जी या टाटा है वो भी बहुत अमीर है, कभी ऐसे हुआ कि उनके जो पुत्र है बिरला जी या उनके पुत्र है क्या है वो गुम हो गया इधर, और उस ऐसा नहीं कि आज ऐसा मोबाइल है ना आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो लोग वो ढूंढ रहे लेकिन ये नहीं मिल रहे,
और ऐसे कई बहुत समय निकल गया, वो बच्चा क्या है रोड के ऊपर ऐसे ही घूम रहा है, फिर रहा है, भीख मांग रहा है, ऐसे उसका स्थिति क्या हो गया, बहुत ही गंदा हो गया, तो बहुत दुर्बल हो गया वो। तो एक व्यक्ति आता है और देखता है कि ये अच्छा बालक है, लेकिन क्या है इसका स्थिति ठीक नहीं है, बहुत भूखा है करके उसको अन्न देते हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या आता है और देखता है कि ये लड़का है करके उसको कुछ या कपड़े देते हैं, क्योंकि उसके कपड़े टूट गए करके। लेकिन आप मिल जाते हो उनको, तो आप पहचानते हो उसको, ये इसके अमीर परिवार से ये लड़का है उनका, तो इसलिए उनको फिर से कांटेक्ट करके हमें क्या कर देना चाहिए, उनके घर भेज देना चाहिए। तो इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है बताइए? तो जो घर भेज दिया, क्यों वो श्रेष्ठ है बताइए? सारी समस्याएं समाप्त हो गए, ये कृष्ण भावनाम बताए। सभी बद्ध जीव इस भौतिक जगत में क्या है, भगवान को भूल गए हैं, अपने पिता को भूल गए हैं, इसके कारण इस भौतिक जगत में बहुत सारे सुख भोग रहे, भुगत रहे, यातनाएं भोग रहे। तो वो व्यक्ति जो फिर से भगवान के साथ हमारे जब संबंध स्थापित करते हैं, वो सर्वोच्च कल्याणकारी करने वाले व्यक्ति है ना। तो उसका अर्थ होता है सर्वभूत हिते रता, वो व्यक्ति है, ऐसे प्रभुपाद जी ने उनको समझा दिया कि इसलिए हम कृष्ण भावनामृत करके हम सबसे श्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं समाज का या दुनिया का, सभी जीवों मानवता का। तो इस भौतिक जगत में जितने भी ऐसे समाज सेवक है, जितने भी ऐसे संस्था है, जितने भी जो सरकार है, देश है, सब मिलके भी वो क्या करेंगे, इस भौतिक जगत के समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश करेंगे तो भी हल नहीं होंगे, क्योंकि भगवद गीता वो मूल समस्या को, मतलब वो पॉइंट्स आउट, वो हमें बताता है क्या समस्या, हम लोग भगवान को भूल गए, वो मूल समस्या। जब उसको हम लोग सुलझाते हैं तो सभी समस्याएं सुलझाएंगे। जब तक उसको नहीं सुलझाएंगे तो आप कितना भी करो इस जगत में, कभी भी इस जगत के समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, सिर्फ व्यर्थ है, व्यर्थ प्रयास है, अज्ञान है। आप कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस कर रहे हो लेकिन अन्न, शरीर को अन्न नहीं दे रहे, तो क्या होगा? या वैसे वो प्रभुपाद जी आरंभ में बताया ना, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आप उसके कपड़े को पकड़ कर लेकर आए तो क्या फायदा हुआ, वो व्यक्ति तो डूब गया। इसीलिए आत्मा क्या है, भौतिक जगत में डूब गया है, तो सिर्फ ये शरीर उसका कपड़ा है, उसको ऊपर उठाने से क्या होने वाला है। तो ये हमें करना चाहिए, इसलिए वो सर्वभूत हिते रता है। तो जो व्यक्ति मानव समाज का बहुत कल्याण करने में व्यस्त रहता है तो वास्तव में वह किसी का भी सहायता नहीं कर सकता, शरीर तथा मन की क्षणिक सुख खुशी संतोषजनक नहीं होती, जीवन संघर्ष में कठिनाई का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा अपने परमेश्वर से साथ अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढ जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। आप पूछ रहे थे ना दोपहर में, प्रश्न पूछ रहे थे ना, आप दोपहर में प्रश्न पूछ रहे थे ना, ये है उसके उत्तर। तो है ना, दोपहर में प्रश्न पूछ रहे थे ना, इसके लिए ये नहीं, हमने वो कथा बताया ना। तो ऐसे हम लोग स्कूल में ये सब वितरण करना, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो हमें सबको कृष्ण भावनामृत वितरण करना है। हमारा शक्ति उसमें नहीं लगना चाहिए। वो अंत में क्या है, वो स्कूल में अध्ययन करके वो सब असली बनने वाला है ना। जो व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय बाह्य सुख को त्याग दिया है, वो क्यों दूसरों को सिर्फ अगेन और बाह्य सुख में लगाएंगे, है ना, नहीं लगाएंगे। तो आध्यात्मिक या ये जो पढ़ी है इसको करे को
केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना।
तो पूरा तात्पर्य सर्वभूत हिते रूप प्रतः के ऊपर केंद्रित है।
जो व्यक्ति को ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उत्तम है और वे जो भी कर्म करता है सबके हित को ध्यान में रखते हैं, परम भोक्ता परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण।
हाँ, तो ये मूल कारण है।
अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वे स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता का बिल्कुल भी संदेह नहीं। मैं इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वे समस्त पापों से रहित हैं। ऐसा है ये दैवीय प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने नहीं व्यस्त रहता है वे वास्तव में किसी को भी फायदा नहीं कर सकते। शरीर तथा मन की क्षणिक सुखी क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जो मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति कौन त्याग सचेष किया जाता है भौतिक शरीर के जाते हैं।
काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनके मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो ब्रह्म निर्वाण बहुत ही शीघ्र वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला। तो इन सब में से ये अलग अलग लोग ही उनका अलग अलग स्वरूप सिद्ध है, आत्मसंयमी और संसिद्धि को निरंतर प्रयास करते हैं, ऐसे कई सारे लोगों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। उन सब में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण के भक्त। इसलिए यहाँ पर श्लोक प्रभुपाद ये भागवत से श्लोक उल्लेख कर रहे हैं। यत् पाद पंकज फलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ब्रह्मा ग्रतितं उद्ग्रतयन्ति संतः तद्वत्र रिक्तमतयो यतयोपि रुद्धस्तोत्रो गणास्तमरणं वजवासुदेवम्। यहाँ पर भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने के प्रयास तो करो, बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेगों को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितने कि वे जो सकाम कर्मों में कि तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान की चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं, वो लोग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया ना, बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेगों को उतनी कुशलता से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन भक्त उसको रोक सकते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतना बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसे इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है ना पहले, यत तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति बलभद्रं। सो जो भगवत भक्त चेत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वही शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधि स्थित रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जाता है। तो वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भगवान उनको स्वयं सहायता करते हैं। वो कैसे सहायता करते हैं? ये पद्म पुराण से श्लोक है, ये ब्रह्मा जी को संबद्ध करते हैं। हे पद्मजय, यहाँ पर आता है ना, मछली कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मजय, मैं भी उसी तरह करता हूँ। भगवान कह रहे हैं अपने भक्तों को, हालांकि हम लोग भगवान से दूर है, भक्त लोग दूर है, भगवान वो हमें हमारे बारे में चिंतन करके, हमारे ऊपर दृष्टिपात करके ही हमारा उद्धार करते हैं, है ना। ये भौतिक सृष्टि में ऐसे होता हो सकता है, तो आध्यात्मिक विषय में क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। कोई कोई ऐसे नास्तिक बोलते हैं ना, आप भगवान को भोग अर्पण भोग चढ़ाते हो, कैसे भगवान को पहुंचता है। इस भौतिक संसार में ऐसे कई सारे चीज होते हैं, तो आध्यात्मिक संबंध क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सिर्फ अज्ञान के कारण लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, इनको देखकर उनको बहुत ही शीघ्र उनको उद्धार कर देते हैं। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान निरंतर में लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो यहाँ पर यह सबका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान के चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है, उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। तो ऐसे कहते हैं। और अगले दो श्लोक में इसी अवस्था को, जिसको यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया, ब्रह्म निर्वाण कैसे वो भौतिक भोग इच्छा से मुक्त होते हैं, वो सब चीज अष्टांग योग के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, उसको भगवान वर्णन करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भूहु प्राणापानो समो कृत्वा नाशाभ्यान्तरचारिणं यतेन्द्रिया मनो बुद्धिर् मुनिर्मोक्षापरायणः विगते च बाह्य क्रोधो य सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नातुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष के लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यह अष्टांग योग का विधि है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान तथा समाधि है। इसको अगले अध्याय में, छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है, इसको ही विस्तार करते हैं अगले अध्याय में। यहाँ पर संक्षेप में भगवान उसको वर्णन कर रहे हैं। तो करने होता है और तब दृष्टि के दोनों योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि के दोनों बोहों को बीच में लाकर अदकुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि जब तब सो जाने की संभावना रहती है, न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों पर द्वारा आकृष्ट होने का भय बनता है। फिर भी इसके बावजूद भी मन क्या है, कुछ ऐसे चित्रों को हमारे मन में ही सृष्टि कर सकता है, उसके अंदर वो शक्ति होता है। आप आधा बंद करो या पूरा बंद खोल दो, कुछ नहीं होने वाला है। है ना, अंत में अष्टांग योग के द्वारा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने नेत्रों को भगवान के ऊपर दर्शन करने के लिए लगा देना, तब इस भौतिक जगत के जो आकर्षण है उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, वो कृष्ण भावनामृत का विधि है, लेकिन अष्टांग योग का विधि ये बहुत कृत्रिम विधि होता है, बहुत ही यांत्रिक विधि, विधि के द्वारा ये भौतिक आकर्षण से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। तो अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की उपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत को हमेशा जोर देते हैं, है ना। अंतिम श्लोक, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां ज्ञाता। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों की उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे, इतने यहाँ तक तो बहुत सारे चीज वर्णन किए ना भगवान ने, यज्ञ कर्मकांड या देवी देवताओं का उपासना या ज्ञानी और अष्टांग योगियों का जो भगवान को परमात्मा को हृदय में देखना, तो ये सब चीज़ इन पांच अध्यायों में भगवान ने वर्णन किया। तो उन सब का लक्ष्य मैं ही हूँ, ऐसे भगवान बोल रहे। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ और तपस्याओं का भोक्ता मैं ही हूँ। कोई यज्ञ याग आदि करते हैं उसका भोक्ता मैं ही हूँ, तो कर्मकांड से मुझे ही प्राप्त करना है, ऐसे भगवान बोल रहे। और सर्वलोक महेश्वरम, आप देवी देवताओं का उपासना कर रहे हैं लेकिन मैं सभी लोकों का क्या हूँ, महेश्वर हूँ। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्वेताश्वर उपनिषद से उल्लेख करते हैं ना, तम ईश्वरानाम परमम महेश्वरम। श्वेताश्वर में उपनिषद में परम सत्य भगवान कृष्ण को परम महेश्वर कहा गया है, सभी देवताओं के देवता है वो, देव देव ऐसे बताया जाता है। इसलिए उनको हमें देवी देवताओं को उपासना करने से अच्छा उनको देव उपासना करना चाहिए। सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति भविष्यति। और हमें जानना चाहिए कि तो ज्ञान के मार्ग के द्वारा या अष्टांग योग से जो हृदय को परमात्मा को ढूंढते वही मैं हूँ कृष्ण, ऐसे बोलते हैं। तो इसको जो समझते हैं वो शांति को प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को उल्लेख करते थे, अब दुनिया में बहुत ये शांति के बारे में चर्चा होता है ना, बड़ा बड़ा उसके बारे में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़े बड़े लोग उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा भाषण बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई शांति प्राप्त नहीं किया। क्यों? लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। विश्व भ्रातृत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और क्या है, पीस, हारमोनी, लव, ये सब चीज लोग चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी इसको उल्लेख करके बताते थे, ये तीन चीज जब तक हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान कृष्ण को ही सर्व सबका पिता हम स्वीकार करेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, विश्व भ्रातृत्व। जब तक आप एक कॉमन फादर को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे ब्रदरहुड आएगा। कुत्ते बिल्ली की तरह ऐसे ही हम लोग मारपीट करते रहेंगे, है ना। तो इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए, तब तो तभी शांति प्राप्त होगा, ऐसे कहते हैं। तो ऐसा है वो, जब है ना आप पानी रहता है, पानी में आप दो पत्थर डालेंगे तो क्या हो जाता है, उसका तरंग आते हैं ना, तरंग आके एक दूसरे को टकरा के वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोनों पत्थर एक ही इसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हमें सब लोग एक भगवान को स्वीकार करना चाहिए, भगवान कृष्ण को, और उनकी भक्ति करना चाहिए, तब इस जगत में शांति आ जाएगा, तब तक नहीं आएगा। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। तो आप बड़े बड़े यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाओ या कुछ, उसमें सिर्फ झंडे बढ़ते जाएंगे लेकिन दुनिया में कभी शांति नहीं होगा। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करे, जो कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों का उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। तो इससे क्या संबंध है शांति से? हम लोगों को जानना चाहिए कि वही सबके स्वामी हैं, सब कुछ उनको अर्पण करना चाहिए। जब हम लोग सोचते हैं कि ये सभी हमें भोग्य होना चाहिए, हमारे भोग के लिए होना चाहिए, तो इस दुनिया में मारपीट शुरू हो जाएगा, स्पर्धा शुरू हो जाएगा। एक व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाएगा, स्पर्धा और झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन जब सब कुछ भगवान का है, हमें उनको अर्पण करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, तो तुरंत ही शांति प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक इसको समझेंगे नहीं, ये लोग मूर्ख, ये मेरा है, मेरा देश है, ये मैं पाकिस्तान हूँ, मैं इंडिया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं कैथोलिक हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं कुवैत हूँ, ये सब ऐसे बाहरी भेदभाव करके और ये मेरा है, अहम ममा, इसमें डूब जाएंगे तो ऐसे ही होगा, कभी शांति नहीं आने वाला। तो ये सूत्र है, शांति का सूत्र है, इसको जब स्वीकार नहीं करेंगे, फॉरगेट इट, वो कुछ होने वाला नहीं। ये दुनिया के सभी नेताओं के लिए ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए, ये सूत्र उनको देना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको उल्लेख करते थे और उनको प्रचार करते थे। तो नेताओं को प्रचार करना मतलब ये श्लोक को उल्लेख करना चाहिए, इसको इसको बोलना चाहिए। नहीं तो सिर्फ होता नहीं नेताओं के साथ प्रचार। सो दिव्य सेवा में अर्पित कर दे तो, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा इनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे बड़े बड़े से देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में, श्वेतश्वर उपनिषद में भगवान को तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया। माया के वशभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। ये लोग, बड़े बड़े नेता, बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट, वो लोग क्या है, प्रभुत्व जमाना चाहते हैं अपना दुनिया में, है ना। तो स्पेशली अमेरिका इज द मोस्ट एरोगेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, सब जगह वो लोग अपना नाक डालना चाहते हैं वो लोग, है ना। तो मानव क्या है, वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर वो सदाम हुसैन को उड़ा दिया हो, या अफगानिस्तान के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, तो ऐसे अलग अलग नाम देकर वो लोग नाक डालना चाहते हैं, प्रभुत्व जमाना चाहते हैं अपना, है ना। पहले इतिहास में हिटलर वगैरह बहुत सारा, स्टालिन, मुसोलिनी, चर्चिल, ये सब लोग हुए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कोशिश किया हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं ये लोग कोशिश करता है लेकिन अंत में भगवान की माया के द्वारा प्रभुत्व चलता है दुनिया, माया शक्ति के द्वारा, वो लोग माया से भ्रमित है बस, और माया शक्ति के में ये सब क्या है, जस्ट पपेट्स है सब। बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जो लोग हैं, भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से, इंडिविजुअली एंड कम्युनली, शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है, भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जाती है। और ये बड़े बड़े लोग, ये नो जो मंत्री है, वो दूसरों का, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मैं सबका हित चिंतक हूँ, सर्व भूतानां, सुहृदम सर्वभूतानाम, इन समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी हूँ। ये बड़े बड़े नेता लोग वो हितैषी बनना चाहते दुनिया, वो अपना ही वो मृत्यु और बुढ़ापा को पार नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों को क्या कर सकते हैं, है ना, हित कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा पंचम अध्याय का सार को यहाँ पर प्रोपात। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी सब लोग भाग रहे हैं। क्योंकि अभी भी हम भौतिक स्तर पर है, अभी भी पूरी तरह से हम लोग भक्ति में लगे नहीं हैं, उसके कारण थोड़ा भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों नाच रहे आप कीर्तन में फिर, क्यों अभी तक इसमें है यहाँ पर रस नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्यों रहेंगे आप, क्यों वही बार बार नाम उच्चारण करेंगे दिन दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपको थोड़ा उसमें रस है, उसका उतना परसीव नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर वालों को परसीव होता है ये इतना आनंदित है ये लोग ऐसे करके। वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इम्परसेप्टेबल, उतना प्रगति का वो जो है माप उतना हमें अनुभव नहीं होता है इसका। और कुछ, और अलग अलग स्तर में आनंद होता है, भक्ति साधना के स्तर पर, भाव के स्तर पर और प्रेम के स्तर पर, तो सांद्रानंद विशेष आत्मा। या इसलिए वो इच्छा करता है, लेकिन ये थोड़ा एक स्टेप आगे है, सिर्फ इच्छा करना ही नहीं है, वो अपने आप को अज्ञान मतलब क्या है, वो अहंकार में अपने आप को ये देहात्म बुद्धि में रख के वो सभी कार्यों में करना, भौतिक कार्यों में लग जाता है, इंद्रपुत्र के कारण में लग जाता है, इसके कारण उसको सुखदी प्राप्त होते हैं। ये थोड़ा एक स्टेप अहेड है। हम लोग इस भौतिक जगत में भी तो मुक्त रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अज्ञान में है हम लोग, इसके कारण मतलब एक दृष्टि से देखेंगे वो हम चर्चा नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ जीवात्मा ही कारण, जीवात्मा तो इच्छा करता है वो मूल कारण है, लेकिन अन्य भी कारण ही होते, भगवान भी होते हैं और प्रकृति भी होता है, तीनों प्रकृति भगवान और जीव तीनों हैं, लेकिन अंत में जीव की इच्छा है, भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं प्रकृति के द्वारा, ये सब कर्म को प्रकट करते हैं उसके कारण। सो हालांकि तीनों कारण है ना, कर्म का सृष्टि अकेला तो आपका इच्छा से ही होता नहीं ना, इच्छा से कुछ होता है क्या, नहीं तो आप भगवान बन जाते थे, है ना, भगवान इच्छा मात्र से कर्म का सृष्टि कर देते, वो उनका कार्य हो जाता है, हमारा कार्य ऐसे नहीं होता है, सिर्फ इच्छा करने से होता नहीं है, वो एक कारण है इच्छा करना, लेकिन अन्य कारण भी है, तो भगवान और जो जो उनके शरीर प्रकृति से बना हुआ ये शरीर वो भी कारण बनते हैं वो कर्म के सृष्टि के लिए, है ना, नहीं तो कर्म होता नहीं है, इच्छा करने से कर्म होता है क्या, नहीं होता है। तो अज्ञान क्या है, वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है, और इस अहंकार के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण ऐसे कार्य में लग जाता है, तो उसके कारण उसको दुख भोगने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? जब वो अज्ञान से मुक्त रहता है तो ऐसे कार्यों में नहीं लगता है, अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, तो इसलिए वो ये कर्म फलों से बंध नहीं जाता है। क्लियर इट इज? समझ में आ गया? सिर्फ इच्छा करने से कार्य होता है क्या? आपको उसमें लगना चाहिए ना, है कि नहीं? इसलिए अन्य कारण भी है, उस कारणीभूत अन्य चीज भी कारणीभूत हो जाता है। क्लियर? जैसे एक उदाहरण है, एक छोटा बालक है, उसके पिताजी क्या है, वो एक जिम चलाते हैं, शायद इसको उदाहरण गुरुजन को दिया हो शायद, तो वो जिम चलाते हैं। ये बच्चा स्कूल से वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भाग रहे हैं, कुछ वेट उठा रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, इसको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ उठाना चाहिए, लेकिन ये छोटा बालक है, उठा नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने इच्छा किया उठाने का, तो पिताजी देखते हैं ये उठाने के लिए कोशिश कर रहे करके, उनके हाथ को पकड़ के वो उठाते हैं। अभी वो कार्य का कौन कारण बनता है बताइए? कौन संपन्न किया उस कार्य को? पिताजी ने किया या हाथ किए या बच्चा ने किया? कौन किया इसको? पिता ने किया। वो इच्छा नहीं किया तो किया होता तो वो हाथ करते हैं ना कार्य। अंत तो पिता ही है, लेकिन इच्छा जीव करता है और वो कार्य प्रकृति के द्वारा कराया जाता है, भगवान कराता है। तो सभी कारण हैं उस कर्म के लिए, कार्य करने के लिए, लेकिन अज्ञान के कारण जीवात्मा सुख दुख भोगता है, बस। वाई इट सफर्स, जीवा सफर्स। ये तीनों कारण है तो जीव को क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो अज्ञान के कारण अपने आप को कर्ता मानता है और वो अज्ञान के गलत पहचान के कारण इंद्रिय भोग में लग जाता है, उसके कारण दुख कई बार। वो अज्ञान है, प्रकृति में स्थित होना मतलब वो अज्ञान है, देहात्म बुद्धि है ना। गुणों के प्रकृति स्थो मतलब गुण के संपर्क में आना, कारणम गुण संगोष्य, अलग अलग गुण के संपर्क में आने के कारण आप अलग अलग पहचान बनाते हो, है ना। वो अज्ञान में आवृत है तो अपने आप को कर्ता मानता है और ऐसे कार्य में लग जाता है उसके कारण, तब जीव वो जिम्मेदार होता है। नहीं तो जो व्यक्ति मुक्त है वो ऐसे अहम भावना मनोभावना में नहीं है तो उसको वो कर्म फल नहीं उसको छूते है, ऐसे भगवान वर्णन किया ना सत्य। समझ में आ गया? ऐसा प्रश्न उठता है, मैं ये कर्म करूंगा और बोलूंगा कि मैं करता नहीं हूं, ऐसा नहीं है। वो अज्ञान के कारण ही वो कर्म में ऐसा लगता है, है ना। जो अज्ञान में नहीं है वो उस ऐसे कर्मों में नहीं लगता है और अपने आप को करता भी नहीं मानता, इसलिए उसका वो जिम्मेदार नहीं होता है, उसको नहीं छूते भी नहीं है कर्म फल, योग में लग जाता बताया रहता है। योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जयंती है। कंडीशनिंग मतलब मटेरियल लेता है, पाप बीज कहते हैं उसको, पाप बीज दैट इज कॉल्ड एज पाप बीज।
इच्छा
मन और इंद्रियों को ना। या वहां पर तो द्वेष नहीं रहता है क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है, शुद्ध है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। ऐसे इच्छा कर दिया तो भी वो द्वेष के समान है, इस भौतिक जगत में वो पूरा स्थूल रूप में प्रकट होता है, वहां पर बहुत ही सूक्ष्म रूप में वास्तव में वो रहता ही नहीं, ऐसा रहता है। आपने स्वतंत्र इच्छा को व्यक्त किया, प्रकट किया तो वही द्वेष हो जाता है, वहां बहुत ही सटल है ना, वो सूक्ष्म जगत ना, बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है ना, बहुत ही जगत स्थूल होता जाता है। समझ में आ गया? जैसे हम लोगों ने सृष्टि के बारे में कैसे सूक्ष्म वस्तुओं से स्थूल वस्तुओं का सृष्टि होता है हम लोगों ने देखा, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन मतलब स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर तक जाना है। तो आध्यात्मिक स्थान, आध्यात्मिक स्थिति मतलब वो बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, वहाँ पर सब कुछ बहुत सूक्ष्म है। तो ऐसे सिर्फ इच्छा भी, स्वतंत्र इच्छा को व्यक्त करना भी क्या है, वो द्वेष के करने के समान है, वास्तव में वो द्वेष नहीं है, सिर्फ वो ही वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस, दैट्स ऑल, इट्स नॉट एक्चुअली हेटरेड यू गेट, यू वॉन्ट टू चूज टू कम, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, यू वॉन्ट टू नो वॉट इज मटेरियल, but that itself is what, it's a vicious log, iske is prashn mein wo no bahut vichlit ho jata hai, lekin vichlit hone ka kya hai, wahan par sab kuch subtle hota hai, wo wahan par kaise shuddh vatavaran mein adhyatmik jagat mein aise kaise bhautik ichhaen aayengi, aise nahi bhautik ichha to nahi hai, aapko swatantrata to hai, swatantrata nahi to prem nahi hai।